قوم اجتماع نتهر عند الشيطان عند نتهر كاتب شرون ولتنبيه نتسمى الشيء ولوهي نما سوي جاي تاني منو بشكم ثابتا ميهن بروت اليه سوائم ربك داما يم دلاتي سبرا عندك جاي سي كرشن جاي تاني پربن تيان عند الشدويد غدا دهر شباس عند قول بكتو دند هري كرشن هري كرشن 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 هري رام هري رام 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 هري तो पिछली बार हमने चर्चा की थी 13वें श्लोक में तो अभी तक का जो सीक्वेंस था उसमें अर्जुन ने भगवान को पूछा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि भगवान ने ऐसा अर्जुन ने पूछा होगा कि क्या जो लोग होते हैं, भगवान ने कहा कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसे उस भाव से रिसिप्रोकेट करता हूँ। सभी लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते। फिर भगवान ने कहा कि कुछ लोग जो है जो आपके पास नहीं आते, बहुत सारे लोग हैं कि जो आपके पास नहीं आते, तो वो लोग कौन से माने जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि वो लोग जो कर्म का फल है उनको जो रिजल्ट है वो ज़्यादा तेज चाहिए। जैसे कि आप देखते हो देवी देवताओं के पूजक ज़्यादा होते हैं। एक बार प्रश्न पूछा था शिव जी को कि आपके भक्तों की संख्या ज़्यादा है और विष्णु के भक्तों की संख्या कम है, ऐसा क्यों है? विष्णु को पूछा गया था तो विष्णु ने कहा कि शिव जी आशुतोष है और तुरंत सब कुछ दे देते हैं और मैं नहीं देता। तो स्वाभाविक रूप से देवी देवताओं के पूजक आजकल वो धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी है, पैदल चल के जाने का मन लगाएंगे कि ये मेरा हो गया तो ये अनुष्ठान करूँगा, ये हो गया तो ये क्या होगा। फिर ऐसे भी लोगों को हमने देखा है कि शनिवार को हनुमान की पूजा करता है, सोमवार को इसकी पूजा करता है, मंगलवार को इसकी पूजा करता है, बुधवार को इसकी पूजा करता है, वो एक उपवास करता है, वो उपवास करता है, प्रैक्टिकली दिन में ऐसा वीक में एक ही बार खाते। तो मैंने उनको पूछा भाई आप ये कर क्या रहे हो, तो बोले मंडे को ये है। अच्छा, ट्यूजडे तो वो करता ही हूँ मैं कई समय से। अच्छा, वेडनेसडे को ये शुरू किया है। अच्छा, इस तरह से रोज अलग 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 देवी देवताओं की पूजा करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। कुछ लोग खुद स्वयं से करते हैं, कुछ लोग किसी ज्योतिष के कहा इसलिए करते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स ने कहा इसलिए करते हैं, कुछ लोग इस तरह अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। तो कांक्षत कर्म नाम सिद्धि, जो अपने कर्मों की सिद्धि बड़ी तेजी से चाहते हैं, वो लोग कम बुद्धि वाले माने जाते हैं। वो लोग जाते हैं देवताओं के पास, बस लोग नहीं जाते। फिर अर्जुन का ऐसा प्रश्न हुआ कि क्या ऐसा है कि उन लोग का जो स्वतंत्रता है, मीन्स वो जो जाते हैं देवताओं के पास या आपके पास या किसी और के पास, उनकी इच्छाओं पर आपका वश है या उनका अपना वश है? वो अपनी इच्छा से जाते हैं या फिर वो भी आपके ही मार्गदर्शन से जाते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैंने वर्णाश्रम का इंस्टीट्यूशन बनाया है, चार वर्ण चार आश्रम, जिसमें व्यक्ति धीरे 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 तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की ओर आगे बढ़ता है। वर्णाश्रम पद्धति जो है वो प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि मैंने 12-14 साल में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं इस संसार को बदलने के लिए, किंतु अभी भी कई कार्य शेष है जो मेरे शिष्य को करना है। उसमें से एक है वर्णाश्रम। प्रभुपाद का ऐसा इच्छा था कि हरे कृष्ण मार्चिंग होगी, वो तो अभी रशिया में शुरू हो गया। रशिया में अपना जो गुरुकुल है एक, वो गुरुकुल में हरे कृष्ण मार्चिंग करवाते हैं और वहाँ पर क्षत्रिय की शिक्षा दिया जाता है, क्षत्रिय बनने की शिक्षा दी जाती है। मायापुर में जो गुरुकुल है उसमें ब्राह्मण बनने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे तो गुरुकुल में तो चारों ही सब सिखाया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस है ब्राह्मण। और कुछ गुरुकुल जैसे अहमदाबाद गुजरात में कहीं पर एक गुरुकुल है, वहाँ पर वैश्य कर्मा कृषि गौ रक्षा उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोग है ही, कलौ शूद्र संभवा। फिर भी शूद्र भी एक्चुअली हमें केवल इतना पता है कि शूद्र का काम है सेवा करना, लेकिन शूद्र का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। भक्ति विद्यापूर्ण महाराज एक बार मुझे बता रहे थे, बड़ा अलग अलग उनके कर्म उनके क्वालिटीज ये सब बताया। तो ये सब प्रकार की जो चार वर्ण और आश्रम जो है, आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम 25 साल तक ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना 20-25 के आसपास, उसके बाद चाहे तो वो फुल ब्रह्मचारी लाइफ जी सकता है या तो फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी में भी अनेक अनेक प्रकार होते हैं, उपकोरवाण ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे 3-4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक दिन जाता है आश्रम में रहने वाला, दीक्षा के दूसरे दिन एक दिन तक आश्रम में रहता है, फिर घर में चला जाता है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के ब्रह्मचारी होते हैं। सो ब्रह्मचारी, फिर गृहस्था। गृहस्थ का अर्थ होता है 25 साल तक पत्नी और बच्चों के साथ जीव नियमित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके जीवन व्यतीत करना। लेकिन आज गृहस्थ के आगे का जो है वो ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया, और अभी भी जो गृहस्थ वो गृहस्थ नाम के ही बच गए, ज़्यादातर सब गृह में भी है। गृहस्थ का अर्थ होता है कि जिसमें भगवान केंद्र में होते हैं, और गृह मेधि का अर्थ होता है जिसमें इंद्रिय भोग केंद्र में है, तो वो गृह मेधि होते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये एस्टाब्लिश और वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ का अर्थ है कि पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, लेकिन वैराग्यों की भांति और परिवार से अलग इस तरह से रहते, जैसे यात्रा करना वगैरह वगैरह वानप्रस्थियों का काम। और संन्यास का अर्थ होता है कि वो सामाजिक रूप से मर जाता, सिविल डेथ, मर गया, फिर उसका पत्नी से भी कोई संबंध नहीं है, परिवार से भी कोई संबंध नहीं है, और वो परिवराज वो पूरे विश्व में ट्रैवलिंग करता है। जनरली ये संन्यासियों का कर्तव्य है। तो ये वर्ण और आश्रम प्रभुपाद का ऐसा इच्छा था कि वो स्थापित करे सारे विश्व में। वो इसलिए क्योंकि कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है, और विशेष करके शुद्ध भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। ज़्यादातर भक्त मिश्र भक्ति वाले होते हैं, जैसे शायद मैंने एक बार पहले बताया था आपको कि एक होता है इस्कॉन में भी, अब क्लियर आपको जैसे इस्कॉन फैल रहा है तो इससे भी आप अपने आप इसको बायफर्गेट कर पा रहे हैं कि एक होते हैं जो सिंसियर भक्त होते हैं, एक कैटेगरी। दूसरी ऐसे कई कैटेगरी होती है, जैसे एक दूसरी कैटेगरी जिसे कम्युनिटी डिवोटी बोलते हैं, कम्युनिटी भक्त। कम्युनिटी भक्त मीन्स जनरली क्या देखा जाता है कि 16 माला जप 4 नियम पालन, इससे अधिक आगे बढ़ने का इच्छा रखने वाले भक्तों की संख्या दिन ब दिन कम होती जाती है। सोलो माला करते, क्या नियम पालन करते हैं, बस अपना लाइफ स्टाइल गृहस्थी संभाल ले, पैसा कमा ले, बस कुछ करके दिखाने का, या कुछ रेवोल्यूशनरी विचार वाले भक्त, या फिर कुछ कुछ विशेष लिविंग सर्विस करने वाले लोगों की संख्या ऑटोमेटिकली कम होती है। तो इसलिए वो जो भक्त है, जो लोग चार नियम सोलह माला से संतुष्ट हो गए हैं, या जिन लोग का कैपेसिटी ही नहीं है इससे आगे बढ़ने की, तो उन लोगों के लिए वर्णाश्रम का पालन करना आवश्यक है। और ऐसे लोगों की संख्या धीरे 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 बढ़ती जाएगी। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे कि वर्णाश्रम सबके लिए होना चाहिए। स्टेप डाउन बोलते उसको। प्रभुपाद ने और एक स्टेप डाउन किया। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वर्णाश्रम को फॉलो करेंगे कोई, तो वो एक दिन कृष्ण भक्ति को, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर पाए, आज नहीं तो कल। लक्ष्य तो वही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो चर्चा हुआ था, जिसमें रामानंद राय ने वर्णाश्रम का वर्णन किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बाहर कर दिया था, एहो बाह्य। तो दूसरी भाषा में अगर देखा जाए, तो जो कभी भी आपको इस अवसर प्राप्त हो कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की चर्चा सुनने को मिले या पढ़ने को मिले, तो उसमें आपको हर एक स्टेप पता पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। रामानंद राय जब एक एक करके जो बता रहे हैं, तो उसमें हर एक स्टेप का वर्णन दिया गया है कि पहला स्टेप किसी जीवात्मा की उन्नति का पहला स्टेप कौन सा होता है, फिर दूसरा स्टेप कौन सा होता है, फिर तीसरा स्टेप। तो जब तक महाप्रभु हो बाह्य कहते हैं, वैसे वैसे वो आगे बताते जाते हैं, और अंत में फिर शुद्ध भक्ति और उच्च गोपी भाव की भक्ति, और उस प्रकार तक वहां तक ले जाते चैतन्य महाप्रभु को, जो साधारण लोग के लिए नहीं है। भक्तों में भी गोपियों जैसा भाव असंभव है, बहुत मुश्किल है। सो इसलिए वर्णाश्रम की जब चर्चा हुई, तो प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत कहते थे, बार बार बोलते थे, चातुर्वर्ण वर्णाश्रम गुण कर्म विभाग, चातुर्वर्ण में आश्रम गुण कर्म विभाग, बार बार। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। जब प्रभुपाद जी ने विदेशी लोगों को संन्यास दिया था या ब्राह्मण बनाया था, तो उन लोगों को प्रभुपाद की बहुत ही निंदा हुई थी। किस इसी को लेकर के, कि तुम ये विश्व संन्यास विदेशियों को सन्यासी बनाते हो, ये लोग तो गाय के मांस को खाने वाले, संसार में कभी एक बार गाय का मांस जिसने कभी खा लिया तो गया काम से, वो कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा मानने वाले लोग है। आप उनको गोस्वामी कैसे बना सकते हो? गोस्वामी तो हम लोग है जात से, कष्ट कास्ट से, तो वो कैसे गोस्वामी बन जाते हैं? आज भी जैसे जगन्नाथपुरी में आप विदेशी लोग नहीं जा सकते, वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये लोग नॉन हिंदू है, पापी है, वो नहीं जाने देते उसको, है ना। सो प्रभुपाद वॉज वेरी मच, जैसे यशोमती नंदन प्रभु को प्रभुपाद जी ने ये सेवा दिया था कि वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, वो सारे मंदिर के जितने भी मुखिया हैं, उन मुखियाओं को कृष्ण बलराम मंदिर के ओपनिंग का आमंत्रण आप देने जाओ। प्रभुपाद ने कहा था यशोमती नंदन प्रभु को, प्रभुपाद ने इसलिए कहा था ये कार्य यशोमती नंदन प्रभु को, क्योंकि प्रभु जी का फिलोसॉफिकल जो होल्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग था उस समय भी, प्रभुपाद के समय भी बहुत ही फिलोसॉफिकली, बहुत ही साउंड, वेरी स्ट्रांग। क्यों? और प्रभुपाद को ये विश्वास था कि ये भक्त अहमदाबाद का, ये सूरती जो जनक भाई, वो सब मायावादियों को और ये जाति को, स्वामियों को, सबको परास्त कर देंगे फिलोसॉफिकली। और प्रभु यशोमती नंदन प्रभु गए थे सबके पास, और उन्होंने शास्त्रों का आधार से बार बार ये कोशिश सबको प्रयास किया। एक्चुअली परास्त करने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था उनसे हाथ मिलाना और उनको मंदिर में आमंत्रित करना। जब कभी फिलोसॉफिकली प्रॉब्लम आती है तो प्रभुपाद का प्रिंसिपल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर वो सैद्धांतिक रूप से कॉम्प्रोमाइज चाहते तो संभव नहीं, ऐसे वैष्णव के रूप में अगर आप हाथ मिलाना चाहते हो तो ठीक है। तो ही वेंट देयर, मेरा उनसे कई बार डिस्कशन हुआ था प्रभु जी के साथ इस विषय में। तो प्रभु जी वॉज ऑलवेज एट प्रभुपाद ही गेव मी दिस फेथ एंड आई एम लाइफ टाइम ग्रेटफुल टू हिम दैट ही गेव मी सच फेथ ऑन यू नो ट्रस्टेड मी, उन पर विश्वास किया था मुझे, क्योंकि उसमें प्रभुपाद का नाम, ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गए थे। सो एंड यू आर फॉर्चुनेट पीपल, यू आर टेकिंग हिज एसोसिएशन, आप लोग सब भाग्यशाली भक्त हो कि आप उनका संगति प्राप्त कर रहे हो। जनरली ये सब पूरी हिस्ट्री भक्तों को इतना पता नहीं होता है कि यशोदेन्द्र प्रभु का जर्नी, अर्ली प्रभुपाद के समय की जर्नी। सो लास्ट संडे भी प्रभु जी ने यही श्लोक बोला था, किदात हुणांध्र पुलिंद पुलकशा वीर शंभाय वनाकसाव्या अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। किदात हूँ आंध्र पुलिंद पुलकश आभिर शुम यवन खस, ये जितने भी जो मैम नाम बता रहे थे ये सारे क्षुद्र से नीचे के जाति के लोग हैं और इन लोग को वैदिक संस्कृति में स्थान नहीं मिलता है क्योंकि वर्णाश्रम के आउट है, दे आर आउट ऑफ वर्णाश्रम, उसमें है वर्णाश्रम में नहीं वो लोग। वो लोग सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना पाप योनि, सबसे ज़्यादा पाप योनि उस प्रकार के, जो पशुओं को खाने वाले, मनुष्य को खाने वाले, लुटेरे हत्यारे, इस प्रकार के लोग हैं ये। ये कोई हम लोग इधर, ये कोई ऐसा है, अभी भी ये लोग जिंदा है, ये सब है, दे आर ऑल देयर। चाहे खाए खस, जो चाइनीज भी है उसको खस बोलते हैं, यवन अमेरिकन लोग हैं। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश, सब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि कौन कौन सी जगह से आता है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं लोग अभी भी। तो ऐसे लोगों को शुद्धि तस्मय, अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया, इससे भी अधिक पापी जो है यदुपाश्रयाश्रया, वो लोग शुद्धन्ति, वो लोग शुद्ध हो गए, वो शुद्ध हो जाते हैं किससे, ऐसे विष्णु जिनके भक्तों की शरण लेकर के ऐसे महान पापी भी जो शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। शुद्धांति तस्मयी प्रभा विष्णवे नमः। तो भगवान के भक्तों की कृपा से पापी से भी पापी व्यक्ति भी जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता। सुचि है मुचि यदि कृष्ण भजे, मुचि है शुचि यदि कृष्ण भजे। कोई पापी से पापी व्यक्ति है अगर वो कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की शरणागत होता है, तो वो ब्राह्मण से भी उत्तम है। लेकिन कोई ब्राह्मण होकर के निम्न कोटि के कार्य करता है तो वो शूद्र से भी निम्न है। सत्कामो निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव, अवैष्णव गुरु न, अवैष्णव स्वपचो गुरु, वैष्णव गुरु न सियात, वैष्णव स्वपचो गुरु। मंत्र तंत्र कोई सत्कर्म निपुण है, मंत्र तंत्र सब जानता है, फिलोसॉफी वेदांत ये वह सब जानता है, लेकिन वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, वो गुरु बनने के लायक नहीं। लेकिन एक चांडाल है जो कुत्ते का खमास खाने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति अगर वह भक्त बनता है, अगर वो वैष्णव है, तो वो गुरु बनने के लिए योग्य है। वैष्णव स्वपचो गुरु। सो जब ये बात बताई थी तो भगवान ने कहा था कि मैं नहीं करता ये कार्य, वर्णाश्रम मैंने बनाया है लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। मैंने जैसे समझ लो रूल्स रेगुलेशन बनाया है सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाया रूल्स रेगुलेशन, लेकिन वो सरकार उस रूल्स के अंदर नहीं आती। आई मीन राजा की बात है, यहाँ की तो छोड़ो डेमोक्रेसी, ये राजा की बात है। राजा जब कोई रूल बनाता है तो राजा उसके अंदर नहीं होती। भगवान वर्णाश्रम को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। इवन ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम, यू शुड नो दैट आई एम येट नॉन डूअर, आई एम नॉन डूअर। और तेरे श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ी होगा, हमने फर्स्ट लाइन लिया था, सेकंड लाइन नहीं लिया था।
According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. Although I am the creator of the system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable.
Yes, because I am unchangeable. Absolute truth is always aloof from Varnasrama system. Bhagavan किसी भी जीवों के कर्मों का जिम्मेदारी नहीं उठाते। आप कुछ करो, कुछ आप आपको यू नो यू मे डू एनी नॉनसेंस, बट कृष्ण इज नॉट, कृष्ण इज अकर्ता। वो हमने आपको बताया था ना एक एग्जांपल, पहले कई बार बताता हूँ ये एग्जांपल। भगवान ने बनाया कि पाप करेगा तो ये करेगा, पुण्य करेगा तो ये मिलेगा। सरकार ने बनाया कि हत्या करेगा तो फांसी मिलेगी, और कुछ अच्छा काम किया, दान पुण्य किया तो तुम्हें कुछ इनाम मिलेगा, राइट। तो अभी ये तो हो गया डिक्लेयर, अभी तुम क्या करते हो इसमें जज क्या करे? तुम हत्या करके आए हो, जज को बोले ये जज तो हत्यारा है, जिसको रोज 10 लोग को बोल देता है इसको फांसी, इसको फांसी, इसको कितने लोग को मारता है। यू नो भगवान इसके नियम बनाने वाले हैं, उसके भीतर नहीं है। अकर्ता, आप की इच्छाओं पर आपका कंट्रोल है। भगवान उसमें कोई क्यों नहीं करते? एक बार कई बार मुझे कुछ भक्त के कहते हैं कि प्रभु जी कृष्ण के लिए क्या असंभव है, कुछ भी नहीं सब कर, तो फिर मुझे भक्त क्यों नहीं बना देते? अच्छा मैं माया में जाऊं ही नहीं, ऐसा कोई चमत्कार करता कुछ भभूति दे दे, मैं माया में जाऊं ही नहीं। तो फिर मैं उनको जवाब देता था, कई लोगों ने पूछा ये प्रश्न, तो मैंने उनको कहा कि भगवान इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि क्या आप कभी भी अपनी पत्नी को ये कहते हो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, यू हैव टू लव मी, तुम्हें मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा? ये संभव है? किसी लड़की को जाकर आप कह सकते हो कि मैं पसंद हूँ या नहीं, बस प्रेम करना ही पड़ेगा? संभव है? असंभव है। प्रेम वस्तु ऐसी है कि जो कभी भी बाय फोर्स नहीं होती, वो होती ही नहीं है, वो कैसे करे, कोई नहीं सकता ये। तो भगवान कभी भी जीवात्माओं को भगवान से प्रेम करने के लिए विवश करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेम कभी भी विवश होके नहीं किया जाता। प्रेम जो है वो हृदय से आता है, और भगवान वो चीज चाहते हैं, इसलिए आपकी स्वतंत्रता का पूरे पूरा उपयोग आपको करने देते हैं, फुल लिबर्टी। वाई कई बार हम कई बार भक्तों कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने आप से, अगर हम आपको कहेंगे 10 बार कहेंगे 16 माला ध्यान से जप करो, आप 4 नियमों का पालन करो, श्रीमद् भागवत खोल के पढ़ो, हम आपको 10 बार कहेंगे, लेकिन जब तक आपके हृदय में ये इच्छा नहीं जागृत होगी तब तक उसका वास्तविक प्रभाव नहीं होगा, मैकेनिकल। आप मैं कुछ बोला, आपने सुन लिया, प्रभु बोला, वो मैकेनिकल हो जाता है, उससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है शुरुआत में मैकेनिकल थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन वास्तव में जब स्वयं हृदय से इच्छा प्रकट, देन इट, सो दैट्स व्हाई कृष्णा इज नॉट होल्डिंग एनीथिंग विद हिम। भगवान कभी भी आपकी इच्छाओं पर अपना वश नहीं जमाते। कभी कभी रेयर केस में भक्तों के साथ ऐसा भगवान करते हैं, रेयर केस में वो इच्छा करेगा फिर भी ना बोलेगा, नहीं करता। आई वॉन्ट लेट, जैसे होता है ना पिता पिता बच्चा कहेगा मुझे यही चाहिए, पिता बोले बेटा इसमें तुम्हारा नुकसान है, नहीं मुझे यही चाहिए। और अगर पिता को बेटा बहुत ही प्यारा है तो सॉरी नहीं मिलेगा, देख देख कभी कभी करता है ऐसे रेयर केस में, उसके लिए आपको भगवान का प्रिय बनना पड़ता है। दैट इज लाइक यस्य हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनं सनै। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति पर मैं ज़्यादा कृपा करता हूँ, ज़्यादा कृपा, उस व्यक्ति का धन छीन लेता हूँ। तो फिर आप कहेंगे प्रभु फिर तो ठीक है, जैसा है वैसे ही ठीक है। ज्यादा प्रेम नहीं चाहिए भगवान का, ज्यादा प्रेम करेगा तो सब कुछ छीन लेगा, आज में मोबाइल भी नहीं रहेगा फिर। तो अभी नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं, आगे आएगा वो सब, इसी चैप्टर में बहुत सुंदर चैप्टर है ये। सो कहने का तात्पर्य है कि कृष्णा कभी कभी कृष्ण कहते हैं कि नहीं मेरी बिना परवानगी सब कुछ होता ही नहीं, कभी कभी कहते हैं कि प्रकृति ही करवाती सब, प्रकृति क्रिया, और कभी कभी ऐसा कहता है कि प्रकृति क्या करेगी, जो जीव अपनी इच्छा लेकर आता है तो प्रकृति तो उसकी इच्छा का पालन करेगी। तो जनरल तीन रूप, तीन मुख्य कर्ता माने जाते हैं, एक तो भगवान, जीव और प्रकृति, ये तीन मुख्य कर्ता माने जाते हैं। लेकिन उसमें भी जो सबसे ज्यादा वेट जिसका है वो है जीव का कर्ता के रूप में, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है कि मुझे कृष्ण चाहिए या माया चाहिए, मुझे अंधकार चाहिए या प्रकाश चाहिए। उसमें प्रकृति थोड़ा हेल्प कर देती है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से, और अंत में फिर भगवान सैंक्शन करते हैं, हाँ कर जो बेटा करना है। सो इस तरह से कर्म जनरेट होते हैं। तो भगवान इसके कर्ता नहीं है। सो कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि वो किस तरह से अकर्ता है। ये कृष्ण को अकर्ता मानना कोई बड़ी समस्या नहीं है, कृष्ण को अकर्ता इसलिए हाउ, क्योंकि पाप करो तुम और उसका जिम्मेदार भगवान, ये तो कैसे संभव है, ये तो संभव ही नहीं। तो एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है ये काम, ये चीज। जैसे अभी एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था 20-25 दिन पहले, वो किसी आश्रम में जाए, आई टोल्ड यू दिस थिंग लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट। तो उसमें वो कहे कि भगवान क्यों हमें बुरा कराते हैं, कॉमन क्वेश्चन। तो मैंने उनको कहा, वही एग्जांपल मैंने दिया, मैंने कहा कि आप यहाँ पर जगह जगह पर ये पार्क देखते हो, हर एक एरिया में एक पार्क है, किसने बनाए, सरकार ने ही बनाया ना, भले लोकल सरकार ने बनाया, सरकार ने ही बनाया ना पार्क तो। हाँ, और मैंने कहा कि साबरमती में जो जेल है वो किसने बनाई, वही सरकार ने बनाई। तभी पार्क में जाना या जेल में जाना सरकार आपको बोलती है कि आप पार्क में जाओ, आप जेल में नहीं, आप जेल में नहीं जा सकते, आप पार्क में जाओ, ऐसा बोलती है नहीं। उसका डिसीजन कौन करता है, बोले हम लोग करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि तो फिर भगवान कैसे जिम्मेदार है उस चीज के लिए, हाउ यू कैन ब्लेम कृष्णा फॉर दैट। अंदर से प्रेरणा, क्या अंदर से प्रेरणा, चीटिंग करता है कोई अंदर से प्रेरणा, तुम करते हो ये बदमाशी। सो वॉट एवर बैड हैपन्स दैट इज डन बाय कृष्णा, वॉट एवर गुड हैपन्स दैट इज डन बाय मी। जो कुछ बुरा होता है मेरे साथ उसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है संसार में, कौन, भगवान। और जो कुछ भी अच्छा होता है प्रभु जी वो तो मैंने किया, ठीक है मैं अपना जश्न ही लेना चाहता लेकिन मैंने किया। दिस इज लाइक दिस, बट व्हाट एवर यू डू यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स, 100% रिस्पॉन्सिबल। सो नेक्स्ट श्लोक 14,
there is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work.
Namam karmaani limpati. अर्जुन मुझे कोई कर्म का फल मुझे कर्म छू नहीं सकता, तमाम कर्माणि कुछ भी, इफ आई किल किंग डज नो रॉन्ग, राजा किसी को हत्या करे तो उसको पाप नहीं लगता, जिस कृष्ण क्यों ऐसा, राजा का तो एग्जाम्पल हमने दिया, क्यों ऐसा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, क्यों ऐसा, क्योंकि सूर्य जो है उसको इस संसार की कोई भी मलिनता अपवित्र नहीं कर सकती, कोई सूर्य को अपवित्र कर सकता है, सूर्य अगर आपके आंगन में हो तभी भी वो पवित्र रहता है, और वही सूर्य अगर किसी के किसी गंदे कूड़े में उसकी किरण जाती है फिर भी वो पवित्र ही रहता है, वो पवित्र होता है नहीं, अभी इसको तो इन्फेक्शन लग गया अब ये नहीं काम में आएगा, ऐसा होता है नहीं, सूर्य हम हमारे कर्मों के कारण बद्ध हो जाते हैं, हमारा कर्मों का हर एक कर्मों का फल मिलता है, भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नमे कर्म फले स्पृहा, नमे कर्म फले स्पृहा, पहले तो कहा कि कोई कर्म मुझे छू नहीं सकता, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग मुझे किसी कर्म के फल की इच्छा नहीं है, क्यों कर्म के फल की इच्छा क्यों नहीं है,
चैप्टर में बोला था कि पहले कोई ड्यूटी नहीं है, चैप्टर नहीं है कि जो मुझे पाना है,
हाँ क्यों नहीं पाना,
बिकॉज़ एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम,
यस, नमे कर्म फल स्वभाव, आप अपने घर में बैठे हो समझ लो कि आप आपकी जेब में एक एक जेब में कुकीज रखा है, दूसरी जेब में आपने कोई और कुछ रखा है, और कोई जेब में मोबाइल रखा है, अभी आपकी जेब में से आपको जब खाना है खा सकते हो कि उठा सकते हो, इसमें आपको कोई इस किसी को पूछना है, इधर लाइक दैट, कृष्ण संसार के मालिक है, स्वयं संतुष्ट है, उनकी इच्छा से वो इंद्र नारायण को इंद्र ने अरेंज किया था कि ये नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र का ये समस्या हमेशा रहता है कि कोई भी तपस्या करता है तो उसको सबसे पहला डर लगता है कि मेरी पोजीशन चली जाएगी, तो आप देखो इंद्र को ये समस्या है तो फिर हम लोगों में तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमें तो होगा ही ना, ये हम लोग भी परेशान है, मेरी पोजीशन ले लेगा ये, मेरी पोजीशन ले लेगा, तो इंद्र ने भेजा कामदेव को, सब सब सारी अरेंजमेंट करके भेजा कि नारायण को ख़त्म करो, उसकी तपस्या भंग करो, और ऐसा किया कि आज तक ऐसा अटैक इंद्र ने किसी के ऊपर नहीं किया था, ऐसा अटैक किया पूरी हवा उसके अनुकूल एनवायरनमेंट अनुकूल किया, बहुत सब कुछ किया उसने, तो नारायण ऋषि ने आँख खोल के कामदेव को कहा हंसने लगे, बोले तुम देखना चाहते हो कि मैं क्यों तुम्हारी ये इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ तुम्हारी शक्तियों से, देखो मैं भी दिखाता हूँ, तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं वो इंद्र वो कामदेव लेके आया है, तो नारायण सिंह दो हाथ में से उनके दो हाथों में से सुंदर लक्ष्मियाँ निकलने लगी, वो अप्सराएं सब बेहोश हो जाए देख करके ऐसे सुंदर, बोले तो तुम लोग क्या मुझे दिखाओगे सुंदरता क्या है, देखो मेरे पास सुंदरता क्या है, इसलिए भगवान को संसार की किसी भी चीज का कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान वृंदावन की गोपियां बहुत सुंदर थी इसलिए भगवान आकर्षित हो गए, ना भगवान को संसार की किसी चीज का आकर्षण नहीं है,
प्रेम
भगवान को केवल भक्ति से आकर्षित किया जाता है, केवल प्रेम से आकर्षित किया जाता है, और कोई चीज से आकर्षित नहीं है, भक्ति ते जहारा पायलो गोविंद चरण, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण, द्विज पत्नी ब्राह्मण की पत्नी नाग कन्या, ये सब लोगों ने कोई तपस्या नहीं किया था, उन लोगों ने कोई कर्मकांड नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, भक्ति के भक्ति ते जहारा पायलो, भक्ति केवल भक्ति से, अगर आप चाहते हो कि आप भगवान का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो तो आपकी कोई आवश्यक कोई आपकी ये एक्सपर्टाइज नॉलेज आपका सुंदरता आपका ज्ञान आपका धन कुछ काम नहीं आएगा, एक ही चीज आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो, एक ही चीज है, जेन्युइन डिवोशनल सर्विस, जेन्युइन भक्ति, है ना। मोटी वाला नहीं है, ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो ये मिलेगा, ऐसा वाला नहीं, जेन्युइन भक्ति, तब आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। सो भगवान को किसी कर्म का इच्छा नहीं है और उनको कर्म फल की स्पृहा नहीं है, और जो व्यक्ति इस तरह से मुझे जानता है उसको मेरे जैसा फल प्राप्त होता है, क्या उसको भी कर्म बिरना सब थे, उसको भी कर्म का फल भुगतना ही पड़ता, ये स्पेशल मर्सी हो गई। भगवान तो है ही कर्म से पर, ना उनके इच्छा है और ना उनको कर्म करना है, कोई ड्यूटी है उनके लिए कोई, लेकिन जो ऐसा समझता है वो भी, अर्थात जो मेरे भक्त है वो भी मेरे जैसे ही नेचर वाले हैं, क्या उनकी प्रकृति में वो जो कर्म करते हैं उसका बंधन उनको नहीं लगता, तो इसका अर्थ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, वो जो भी करते हैं वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, इसलिए उनको कोई बंधन नहीं लगता। सो फिर भी भगवान इधर आते हैं, कर्म करते हैं, भगवान के भक्त भी इधर आते हैं, कर्म करते हैं, वर्णाश्रम को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि भगवान बनाया, लेकिन कभी कभी गुरु को भी स्वीकार करते हैं, पत्नी भी स्वीकार करते हैं, सब करते हैं, ऐसा जैसे हमारी तरह ही जीते रामचंद्र भगवान आए, सब फॉलो करते हैं हमारी तरह, लेकिन वो इससे बंध नहीं होते। सो प्रमिनेंट एग्जाम्पल इज रासलीला, कि मध्य रात्रि में दूसरों की पत्नियों के साथ इस तरह से नृत्य करना, नाच करना, ये क्या किसी किसी सज्जन व्यक्ति को शोभा देता है? भगवान की बात छोड़ो, किसी सज्जन व्यक्ति को शोभा देता है? नहीं देता। अगर नहीं देता तो जो धर्म की स्थापना करने की जो बता रहे थे, तदात्मान सुजा में हम यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना करने के लिए जो प्रकट होने वाले पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म, वो व्यक्ति दूसरों की पत्नियों के साथ इस तरह का नृत्य कैसे कर सकते हैं? मैनी पीपल से लग गया ऐसे रासलीला, क्या वो गोपियों का वस्त्र है क्या, ये भी क्या बात है, वो वस्त्र क्या बोलते चिरघाट पर भगवान इस तरह से बोले, मैं तो मैं सबके वस्त्र उठा के चुरे भाग गया, तो ये कौन सा धर्म है भाई, ये कहाँ का धर्म है? तो इसलिए कुछ लोग भगवान को ये दोष देते, लेकिन प्रभुपाद एक जगह का है, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि प्रभुपाद भगवान ने दूसरों की पत्नी के साथ रासलीला किया था, तो प्रभुपाद ने कहा दूसरों की पत्नी कहाँ है? प्रभुपाद ने कहा कि संसार में जितनी भी पत्नियां हैं सब उनकी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी भी उनकी पत्नी है और तुम भी उनकी पत्नी हो, है ना भगवान को। तो कोई भी व्यक्ति सोचा मेरी पत्नी कैसे उनकी हो गई, है ना, यस, क्यों? क्योंकि संसार में जो भी दिखता है सर्जन में, चर अचर जीवात्मा शरीर आपका जो कुछ भी है, उसका एकमेव स्वामी है कृष्ण, स्वामी भगवान मालिक। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने ही शरीर के किसी अंग के साथ मध्य रात्रि में नृत्य करता है तो इसमें पाप कहाँ है? अपनी ही सृष्टि में जिसने बनाया है उसमें से किसी एक चीज को अगर वो उठाता है तो उसमें चोरी कहाँ है? तो उनकी सृष्टि है, तुम्हारी सृष्टि तो नहीं ही है, वो तो पक्का है। और ये लोग प्रश्न क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिकॉज यू आर एनवियस, क्योंकि तुम भगवान से जलते हो, तुम कृष्ण ऐसा कर सकते हो, मैं एक को भी नहीं संभाल पाता ठीक से, So this is impossible. मुझे क्यों ना बोल दिया जाता है? You know, no he receives sex. दीक्षा लेने से गुरु जी ने बोल दिया, no he receives sex. You know, हमें क्यों रोका जाता? That is the problem. Because you are not Krishna. And when you try to be Krishna, you are doomed. You are dog. इसलिए तो बड़े बड़े बापू पकड़े जाते हैं स्कैंडल करके, कृष्ण बनने का नाटक करते हैं। अभी भी है वृंदावन में कुछ लोग, एक बापू है वृंदावन में, अभी जिंदा ही मर गया पता नहीं, लेकिन एक बाबा था वृंदावन में, वो अपने आप को कृष्ण कहता है और उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि कोई भी पुरुष उनके आसपास नहीं घूम सकता, कोई भी पुरुष, ये उनका नियम है। ओनली स्त्री ही होना चाहिए उनका, कुछ भी उनके उनके आश्रम में कोई पुरुष है ही नहीं।
आश्रम भी है?
हाँ आश्रम भी है, कोई पुरुष है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये लोग ना कर, ऐसे बंगाल में भी बहुत सारे आंवला बावला इस प्रकार के निकले थे, वो लोग अपने आप को कृष्णा और किसी को राधा बनाएंगे, और फिर कोई लोग लड़कियां बनेंगे, पुरुष भी लड़कियों का ऐसे घूंघट डालेंगे, साखी देखी और घूंघट, यू नो घूंघट डालो ऐसे बहुत रिस्की होता है आपको, कई बार हमारे भक्त लोग यू नो इसमें आनंद अनुभव करते हैं, हाँ देखो स्त्री का पुरुष स्त्री के कपड़े पहन करके सिर पे घूंघट डाल करके गोपियों का नाच करता है, नहीं प्रभुपाद ने कभी भी इसको अनुमोदन नहीं दिया है, ये सस्ता चीप नहीं है कि आप कुछ भी इस प्रकार का यू नो, और उस अवस्था के लिए आपको पुरुष होकर के स्त्री के कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, आप साधक हो।
हाँ
तो आप साधक हो, आप सिद्ध देह की नकल नहीं कर सकते, जब आप सिद्ध हो जाओ तब जो नाटक करना है करो, लेकिन वो नाटक नहीं होगा तब असली होगा, अभी जो कर रहे वो नाटक है। सिद्ध देह में इज नॉट दिस मटेरियल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। व्हेन यू गेट नारद, नारदी गोपी बन गया, तो नारदी गोपी जब बने तो उनका शरीर दूसरा मिलता है, स्त्री का शरीर मिलता है, तो उस तरह से आप करना है वो अलग बात है, वो अवस्था अलग है।
That happens in spiritual
body. That is in spiritual, it is material, it can be, but you are given transcendental body, not this, you know, elements, material elements body, ऐसा नहीं। दिव्य शरीर तो आपको इधर मिल सकता है, लेकिन वो सब अलग है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर जो हो रहा है वो सब ढोंग है, नाटक है, इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा तेजी असाम न दोषाय, कृष्ण कैन नॉट बी कंटामिनेटेड बाय मटेरियल आइडियाज, भगवान को दोष छू ही नहीं सकता। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि अगर नाम भगवान का बोलने से पाप करने वाले शुद्ध बनते हैं तो वो व्यक्ति कोई अशुद्ध कार्य कैसे कर सकता है? इफ जस्ट बाय चैंटिंग हिज नेम यू आर प्योरिफाइड ऑफ ऑल द अबोमिनेबल एक्शंस, देन हाउ दैट पर्सन हिमसेल्फ कैन क्रिएट एनी नॉनसेंस और ही कैन डू एनी इंजस्टिस और यू नो कंटामिनेटेड, दैट्स इम्पॉसिबल। सो 15वां श्लोक में एक्चुअली एग्जाम्पल के रूप में प्रभुपाद शायद तात्पर्य में एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे में जैसे बारिश होती है, तो बारिश होती है, बारिश सब जगह होती है, लेकिन सब जगह अन्न का उत्पादन नहीं होता, कहाँ होता है? जहां पर बीज डाले हैं, आपने बीज डाले हैं वहां पर आपका अन्न उगेगा। अभी किसी को खट्टे फ्रूट का शौक है, उसने मैंगो डाला है, या किसी ने कोई खट्टी चीज का नींबू का डाल दिया है पेड़, है ना, और किसी ने मीठे चीज का पेड़ बीज डाला है, तो अभी किसी को मीठा फल मिल रहा है, किसी को खट्टा फल मिलता है, इसके लिए बारिश कैसे जिम्मेदार हुई? हाँ
हैवी नहीं भी
हाँ तो ये है भगवान, भगवान बारिश की तरह, बारिश कैसे जिम्मेदार, बारिश ने तो अपना काम कर दिया लेकिन उसका परिणाम किसके हाथ में था, आपने जो इच्छा किया था, आपने जो बीज डाला था, तो इसलिए बारिश को दोष नहीं दे सकते। मेरा बारिश ऐसा हुआ, मेरी मेरा सब नींबू ही पकते हैं, पता नहीं क्यों सब खट्टे ही फल पकते हैं और उसके यहाँ सब मीठे फल ही निकलते हैं, तो उसमें भगवान बारिश क्या करे, तुमने डाला ऐसा बीज, यू डिड सच थिंग, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग। सो 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जनरली जो भी हमारे कर्म होते हैं वो स्वच्छ पूर्ण रूप से भगवान नहीं होने देते। अगर आपने कुछ कर्म किया है ना इतने जन्मों जन्मों के, तो सबके जो परिणाम आते हैं, जैसे समझ लो कि मुझे आज सर्दी हो गया या मुझे हेडेक हो रहा है, तो कर्म जो है उसका वो पहले किसी कर्म का ही परिणाम है, तो भगवान ये कर्म जो है उसको साफ नहीं करते पूर्ण रूप से। अरे मैं तो बहुत साधना किया, बहुत भक्ति किया, बहुत सेवा किया, बहुत श्राम कीर्तन किया, ओके नष्ट प्राय शुभ द्रेश, नष्ट प्राय करता हूं मैं, क्यों थोड़ा सा छोड़ देता हूं, थोड़ा सा किसके लिए छोड़ा, अगर मैंने पूर्ण रूप से नष्ट किया तो उसको अभी के अभी संदेह मुक्ति देना पड़ेगा, और उसका जो चेतना है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होने के लिए उसको समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपके जो कर्म है वो कर्मान निर्दहति हो भी जाए, बहुत बहुत आपने उत्तम प्रकार की भक्ति की, फिर भी आप यहाँ पर हो बहुत शरीरधारी, इसलिए जब तक आपके सांस बचे हैं ना तब तक आपको इस वही कर्मों के रिएक्शन के रूप में वो सांस आप लेते हो, वही कर्म के लिए, और वो सांस लेते लेते प्रकृति के नियम के अनुसार ये शरीर को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो आपके कर्म का भाग होगा। इसलिए भगवान बहुत ही कम केसेस में ऐसा करते हैं, कम केसेस में भगवान ऐसे दुष्कर्म क्रिएट नहीं करते जनरली, ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई दुष्कर्म बचा ही नहीं अभी इसको सिखाने के लिए दुष्कर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करते, ही डजंट डू दैट। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप पर विशेष दया करके विशेष प्रेम करके आपका कुछ कोटा बाकी रह गया है लास्ट में अंत में, तो उसको 0-0 ऑन द स्पॉट कर देते हैं लास्ट मोमेंट, ऐसा करते हैं कभी कभी भगवान। भक्त अगर साधना किया उसका इच्छा था, अभी 2 दिन पहले मैं लेक्चर में बता रहा था कि भगवान ये नहीं देखते कि आप कहाँ पर हो कैसे हो, भगवान देखते हैं आप क्या चाहते हो, ये देखते हैं और उसी के आधार से आपके साथ व्यवहार करते हैं। और जब अंत में आपकी इच्छा रह गई थी कृष्ण भावना मृत, जब आपका पालन कर लास्ट मोमेंट आ गई, मृत्यु के समय आ गए, तब आपके हृदय में ऐसी इच्छा थी कि मैं भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, यही मेरी, भले ही ऐसा हो कि मेरी इंद्रियों पर मेरा वश नहीं है अभी भी, मेरा मन अभी भी मेरे वश में नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा गोल निर्धारित है, मेरी इच्छा भगवान की सेवा करने की जो है वो प्रबल है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है और भगवान की इच्छा है तो भगवान उसके जो वीकनेस है उसकी उसको गिनते नहीं और उसको भगवत धाम भेज देते। दैट इज कृष्ण कैन डू दिस। लास्ट मोमेंट आप शुद्ध नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, भगवान के लिए शुद्ध करना 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड शुद्ध हो गया फिनिश, तो सीधा भगवत धाम, दैट इज पॉसिबल। बट इसका अर्थ है नहीं हाँ अब शुद्ध होंगे नहीं होंगे कृष्ण को तो करना ही नो
खटवान हो गए थे तुरंत क्षण में ही
हाँ खटवान खटवान महाराज यस सो दैट इज द आइडिया तो इसलिए ये नहीं सोचना कि भगवान की कृपा तो मिलती ही है सबको तो हमें भी मिलेगी नहीं ये नहीं सोचना तो फिर आप भगवान को धोखा दे रहे हो और वो तो धोखा खा ही नहीं सकते तो इसलिए आपकी केवल एक इच्छा को प्रबल बनाओ कि आपको अच्छा भक्त बनना है शुद्ध भक्त बनना है और आपके हृदय में जो कचरा भरा है वो कभी ना कभी किसी तरह से आप उसको हटाना चाहते हो ये इच्छा को प्रबल बनाओ फिर भगवान कर देंगे भगवान लास्ट में देखेंगे कि इसको अभी मुश्किल से 2 महीना 4 महीना शेष रह गया है जीवन में और इसकी एक इच्छा के कारण परेशान है एक प्रकृति का ऐसा झटका दे देते हैं कि वो इच्छा करना ही बंद कर देगा दैट इज हैपनिंग ओनली विथ सम सरेंडर सोल्स शरणागत है उसको ही होता है नॉट विथ एवरीवन सो 15वें श्लोक में कहा गया है कि अगर इस ज्ञान का कोई व्यक्ति उपयोग करता है तो क्या होगा पढ़ो ओके
All the liberated souls in ancient times acted with his understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty, following in their footsteps.
Yes. जब इस तरह से कोई व्यक्ति ज्ञान को अनुसरण करता है, तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है. वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है. भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम ये कर्म करोगे तो इसका ये परिणाम मिलेगा इसका ये परिणाम मिलेगा ऐसे काम और आर्गुमेंट्स किए थे कि इसका परिणाम कर्म का मैं इन सबको मारूंगा इसका कैसा परिणाम आएगा अर्जुन ने जो आर्गुमेंट्स करे थे तो भगवान कहते हैं कि अगर जन्म मृत्यु से मुक्त होने का इच्छा है तो मैं तो फॉलो व्हाट अर्लियर पीपल फॉलोड फॉलो दिस थिंग व्हाट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट मेरे ज्ञान को अनुसरण करो इसलिए अर्जुन मुझ पे श्रद्धा रखो मैं कहता हूं तुम्हें युद्ध करने के लिए तो मुझ पे श्रद्धा रखो इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी स्पष्ट कहते मेरे ज्ञान में रह करके तुम ये युद्ध करो और मेरे अनुसरण यू नो डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी मुझे अर्पण करो ये युद्ध मुझे अर्पण करो तो इसका परिणाम यह आएगा कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी क्यों क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की है ऐसा एक श्लोक आगे भी था बिल्कुल इसी तरह का
जनक आदि यानी जनक और आदि उन्होंने ऐसे फॉलो किया
नॉट मच इट इज उसमें केवल ये फर्क था कि उसमें शुद्ध भक्ति की चर्चा की थी मेरा भाव प्राप्त करता है प्रेम प्राप्त करता है आगे वाले श्लोक में और यहाँ पर कहा गया कि मुक्ति प्राप्त करता है दिस इज द डिफरेंस लेकिन वो हायर स्टेज की बात हुई थी बहु पुता मद भाव मागता इसी अध्याय की बात कर रहे आप
And so similarly, like here Krishna is saying that मेरे को काम नहीं करना होगा, and then he says that जो इस तरीके से काम किया था जनक आदि थे उन्होंने, and then they attained.
हाँ, वो निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे थे.
So is there difference between this whatever we say?
No. Why? Because निष्काम कर्मयोग का नाम ही है ज्ञान युक्त कर्म. कर्म जब ज्ञान से युक्त हो जाता है, वही निष्काम कर्मयोग. एक्चुअली उस समय जब भगवान तीसरे अध्याय में जब बता रहे थे तो कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे थे तो कर्मयोग के विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो प्रभुपाद बताते कि कर्मयोग का अर्थ ये नहीं होता कि कोई भी कर्म करो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो प्रिस्क्राइब ड्यूटी का अर्थ है कि आपका जो स्वधर्म है उसका पालन करो तो उस विषय में जनक आदि का एग्जाम्पल दिया था कि वो जनक महाराज जैसे जिन्होंने अपने स्वधर्म का पालन करके सिद्धि प्राप्त की थी और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का अनुसरण करके सिद्धि प्राप्त की है
The result of that is
the same.
Isn't that Atmagyan?
Yeah.
Nishkam Karma Yoga, because this is...
Yes, yes. Nishkam Karma Yoga is never without knowledge. Transcendental knowledge.
Isn't that like, ki, Nishkam Karma karte hai, then we attain Gyan?
That is Gnyan Yoga.
That is Gnyan Yoga.
That is Gnyan Yoga. जिस ज्ञान में ज्ञान योग में आप कर्म नहीं करने का इच्छा प्रस्तुत
नहीं, नहीं, कर्म करते हैं
या
बट निष्काम भाव से विदाउट एनी अटैचमेंट
या दैट इज निष्काम कर्म
रिजल्ट ऑफ दैट निष्काम डूइंग निष्काम कर्म योग दैट इज ज्ञान राइट
नो ज्ञान योग इज अ स्टेप हायर
या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग After doing Nishkam Karma, we come to that stage of Gyan.
In that,
that is the result of
Yeah, but in that, he wants to stop activity.
Yeah, different at that time. Yeah, so in this Gyan here, that is same Gyan. Because
no.
Here Krishna is giving his transcendental knowledge.
That is
and
different.
There, that after performing Nishkam Karma Yoga, the Gyan that we get, that is about soul, right?
Yes.
Because of, that is explained in the beginning.
तो यहाँ पर जो चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान प्रॉपर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यूज किया है ज्ञान योग यूज नहीं किया तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ज्ञान योग का अभी यहाँ पर आता है कि किस तरह से भक्त जो है या निष्काम जो भगवान की शरणागत है वो परफेक्ट ज्ञान योगी है इसी बस दो श्लोक के बाद आता है वो किस तरह से वो अकर्म में कर्म देखता है कर्म में अकर्म देखता है और जनरली ज्ञान योगी लोग क्या करते हैं वो लोग कर्म को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो इसलिए वो फंस जाते हैं
प्रैक्टिसेस क्या होती होंगी ज्ञान योग बट आई अंडरस्टैंड ज्ञान मींस कि दे कम टू दिस कि देयर वी आर आत्मा और व्हाट आर देयर प्रैक्टिसेस टू फर्दर गो फॉरवर्ड
देयर प्रैक्टिस इज टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स टू कम टू दिस कंक्लूजन दैट वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल एंड फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ज्ञान योग प्रोसेस They come to the level of finding the Supreme Personality inside the body, inside the heart.
So do they take to meditation after
Gyan? Ashtanga Yoga is the next step. Okay. Ashtanga Yoga is the next step. So ye hai unka sir. Isse aage nahi bas. Lekin isme sabse bada risk kya hota hai? Prabhupada kehte hai ki 99% Gnan Yogi kya karte hai? Brahma Satya, Jagat Mithya. Phal gaya, gaya, mar gaya.
Why? Like, wo Mayavadi literature padte hai, that is the reason or?
बिकॉज जितने भी ज्ञान योगी आज है या पहले के समय में थे इसमें शंकराचार्य ने आकर के सबका इतना ब्रेन वॉश किया है कि आज प्रैक्टिकली कोई बचा ही नहीं ज्ञान योगी सब मायावादी बन गए
इन वैदिक टाइम्स एट दैट टाइम
या अर्लियर पीपल यूज्ड टू स्टडी स्क्रिप्चर्स एंड ऑल एंड देन दे यूज्ड टू गो टू फॉरेस्ट एंड टू मेडिटेशन
एट दैट टाइम लाइक वो उस टाइम पे ब्राह्मण थे उधर देखिए दे यूज्ड
टू देयर आर ब्रह्मवादीज ब्रह्मवादी अज्ञानी आर ब्रह्मवादी अष्टांग योगी आर परमात्मावादी देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इज ब्रह्मन ज्ञान योगी तो निराकार ब्रह्म का वो उससे आकर्षित हो जाते हैं कि ब्रह्म इज बेस्ट उससे आगे कुछ नहीं है लग जाए
So what happened? Like, do they seek? Because there is Shukdev Goswami there, and they were also, as mentioned earlier, they were
Sai Jemukti.
No, I'm not talking about, like, when they are instituted in this Brahman conception, at that time, because they don't have that bodily conception at that time, and they are not even attracted to material things. So, like, do they see, because there was one shloka I read.
What they see?
No, because there's one shloka in Ishopanishad there, they say, okay, please remove this effulgence so that I can see you.
But that is for devotees.
No, so do they, like, because most of the time teachers, they say that this is white light, that is what they call Brahman. Mm.
Brahman is not something which is seen materially. Brahman is so effulgent that even Arjun could not see when he was going there. The Brahman is the effulgent of Krishna or Vishnu light. And people, they cannot see further. They don't have further knowledge about Paramatma and Bhagavan. They think this Brahman to be all in all. And they think that there is nothing beyond this, so I should try to merge into this. That is Gnana Yogi. That is Sayujya Mukti. Lekin, wo log reh nahi paate. Aruya kruchena param padam tata patanti adha. Wo log gir jate hai. Kyunki karma karna to aapka swabhav hai. Aur karma ka tyag karne ki baat hui isme, Gnana Yoga mein. Wo brahma mein vilin hone ki baat hui. To aapke ek activity zero ban gayi. when you have zero activity, you are forced to come to this material planet.
तो ये योगा लेटर में तो ये बता देना कि ये स्टेप है फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप मतलब ब्रह्म
योग
हाँ तो वो योगा लेटर जो सरेंडर एंड टू मी में जो बोला तो उसके अंदर में और ये जो है भक्ति योग वो लिफ्ट है पूरा तो इसके अंदर अपना कोई अलग से गुरु शिष्य परंपरा नहीं रहता क्या ये
योगा लेटर
हाँ योगा लेटर में इसमें तो चार संप्रदाय बता दिया
चार वैष्णव संप्रदाय
तो इसके अंदर अगर जैसे कि किसी को अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है अगर वो नहीं समझा तो उसको तो हर एक स्टेप पे मतलब अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना
यस
तो
उसके लिए उसको वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए वेद में जो जिसने वेद ने भगवान ने वेद बनाए तो वेद का जो परंपरा है वेद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को उसको फॉलो करना है देयर इज नो वैष्णव संप्रदाय फॉर दैट हर एक व्यक्ति गुरु के बिना तो ज्ञान मिलता ही नहीं है दे हैव टू लर्न दिस बट जनरली दे लर्न स्क्रिप्चर्स शास्त्र पढ़ते वो लोग क्योंकि तभी तो ज्ञान मिलता है उसके बाद फिर परमात्मा की खोज करने वाला तो सक्सेसफुल ज्ञान योगी होता है वो परमात्मा की खोज करने के लिए अष्टांग योग को फॉलो करता है
भक्ति हम कर रहे हैं so we also go through these stages
we don't go through the stages
no because in the beginning we are not pure devotees
but we don't have to go through this beginning mein bhale aap pure duty na ho lekin aapko ashtang yog ke liye jungle mein nahi jana padega
nahi wo maine bola like jo result hota hai jo unko milta hai because by nishkam karma yoga purification hota heart ka and then they come
their goal is brahman and your goal is krishna
yeah. no yeah that is true my goal is but I am saying ki wo bhi eventually ek ke baad step by step finally they come to bhakti if they want to attain krishna
yeah
So that is step by step process. The first karma yoga, then and in bhakti yoga, because two log ko lete, one is material has material desires, other person is also material, usme same desire. But one takes to bhakti yoga and one goes through this process. So first like karma yoga, nishkam karma yoga pe wo post hai. Then purpose uska ye hai ki heart ka purification ho. And then he understand that he is not this body, he is soul. And then he follows practices of gyan yoga jo. And after that he goes further. वैसे ही हमारा भी होता है क्यों because we also teach की starting में that you are not this body, you are soul. But ऐसा नहीं कि theoretically we understand but not practically कि नहीं
आता. From very first day we are saying that you are not this body but you are servant of Krishna. Very first day we say this. That we never say that you are spirit soul but there is no father of you. You just try to find out who is your master. We never say that.
No, I'm not saying. I'm saying that. So do we also go through in
bhakti? We don't go through.
Like we also there will be like. Purification of heart and then finally we will also understand practically not just theoretically that no I am not this body actually soul
yeah
and then
well this bodily concept of life is common to everyone phir wo bhakt hai ya gyan yogi hai ya koi bhi sadharan vyakti hai lekin un logo ko ye bodily concept se nikalne mein bahar time lagta hai aur bhakt ko ye time nahi lagta hai kyunki wo bhakt kya karta hai wo ye nahi sochta ki ye sharir mithya hai वो इस शरीर को भी भगवान की सेवा में डाल देता है फिर वो मिथ्या नहीं रहता है एक ज्ञान योगी के पास ये संभव नहीं है कि वो शरीर को भी भगवान के चरण में डाल देगा दैट्स व्हाई फ्रॉम डे वन डिवोटीज आर हैविंग स्पेशल फेवर ऑफ कृष्ण एंड हिज डिवोटीज दैट्स व्हाई यू नो एज द टाइम गोज वो इस अवस्था में आ जाता है कि वो आत्मा के स्तर पर काम करता है शरीर के स्तर पर काम नहीं करता लेकिन जो ज्ञान योगी और उन लोग का जो प्रोसेस है उसमें वो फंसता नहीं उसका सिमिलरिटी नहीं माना जाता है क्यों नहीं माना जाता है क्योंकि उनका ही लक्ष्य ही अलग है और भगवान ये भक्तों का लक्ष्य ही अलग है उनका लक्ष्य तो वो ज्ञान ब्रह्म का प्राप्ति था इनका भक्त है भक्ति प्राप्ति है सो दे कैन नॉट बी मैच विद देम भक्त उनकी मैच ही नहीं होती उधर मे बी दे मे गेट रिजल्ट दे मस्ट गेट रिजल्ट बिकॉज अल्टीमेटली दे आर कमिंग टू भक्ति Gnan is and all. Ultimately, they have to come to bhakti.
Because Krishna has also explained this path. Yoga,
yeah, this is one of the ways. अगर dance floor पे जाकर के आपको कैसा दिखता है ऊपर से, you know, तो भक्तियों को भी दिखेगा और ज्ञानियों को भी दिखेगा, you know. लेकिन उसको वो एक एक कदम पैदल चढ़ते जाता है, वो सेकंड फ्लोर से भी देखेगा और थर्ड फ्लोर से भी देखेगा कैसा दिख रहा है। और भक्ति योगी सीधा 10th फ्लोर पे जाता है, वो लिफ्ट है उसके पास, 10th से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। दैट इज भक्ति।
प्रभुजी जो उसमें जैसे ब्रह्म ज्ञान, जैसे उस ज्ञान योगी ने भी अगर कुछ स्टेप्स लिए फॉरवर्ड की, थोड़ा कुछ किया, तो
क्या किया
भक्ति में, जैसे कुछ भी सेवा करते हैं तो वो परमानेंट हो गया, ये किया मतलब वो परमानेंट हो गया,
उसमें वो सब नहीं होता।
लेकिन जैसे स्टेजेस से आदर श्रद्धा साधु
मतलब
इस तरह से लेवल्स
तो नेक्स्ट टाइम देखो तो जीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा उसको।
कर्म के लिए ऐसा होता है, ज्ञान अगर किसी ने ये प्राप्त कर लिया शरीर आत्मा का ज्ञान, तो वो आत्मा के स्तर पे आ जाता है, तो फिर उसका परमानेंट रहता है, परमानेंट आत्मा के स्तर पर। लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है इसलिए फिर से गिर जाता है। यस, सो आत्मा के स्तर पर कोई व्यक्ति आता है तो ऐसा नहीं कि एक जन्म में उसने ज्ञान लिया तो दूसरे जन्म में वो ज्ञान ही पैदा होगा,
वो एक बार में पूरा करना
इस स्टेज पे आ गया तो फिर भी जन्म होगा कि ही अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी।
दूसरी जन्म कब होती है, जब आपके कुछ कचास रह जाते, कुछ कच्चा आ गया, फिनिश इट। और उसको अगर नहीं मिला, समझ लो 100% है, कोई कच्चा नहीं, बिल्कुल पक गया पूरा, ठीक है जाओ ब्रह्म में लीन हो जाओ। ब्रह्म में लीन हो गए तो खाना नहीं मिलता है, सोने को नहीं मिलता है, कुछ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, भाई इधर नहीं करना, चलो चल वापिस, चलो वापिस मटेरियल लाइफ में। दिस इज व्हाट हैपेंस,
बट इट्स इजीियर फॉर देम टू गेट भक्ति बिकॉज़ दे आर कंप्लीटली
नेवर, दे डोंट हैव एनीबॉडीज विद देम।
नो बट लाइक सुखदेव गोस्वामी एंड
सुखदेव गोस्वामी हर्ड द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, दैट्स व्हाई,
बिकॉज़ दे आर प्योर, दे डोंट हैव एनी मटेरियल डिजायर्स, दे हैव अटेंड दिस स्टेज फ्रॉम मोक्ष।
लेकिन ऐसे जनरली इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो मायावादी बन जाते हैं, और मायावादी कृष्णापराधी। शुद्ध ब्रह्मवादी जो होते हैं ना, शुद्ध ब्रह्मवादी, वो संसार में बहुत ही कम होते हैं। लेकिन उन भक्ति का प्रोसेस कैसा है कि ब्रह्मवादी है, परमात्मावादी है, कहीं पर भी है, जैसे ही उसको कृष्ण या कृष्ण से जुड़ी हुई किसी भी चीज का स्पर्श हुआ, यू नो सेम मोमेंट ही इज प्रमोटेड टू भक्ति योग। उसके लिए आसान है और हमारे लिए मुश्किल है ऐसा नहीं है। अगर आप भी आपके अध्यात्मिक गुरु की 100% इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो आप उनसे भी महान हो जाते हो। यू डोंट हैव टू वेट दैट ओके फर्स्ट आई हैव टू कम टू दिस लेवल ऑफ यू नो बॉडी एंड सोल एंड ऑल दिस, नो फॉरगेट दिस। प्रभुपाद सेड दैट समबडी इज महात्मा एंड इफ यू फॉलो एवरीथिंग व्हाट महात्मा सेज सो यू आर ऑल्सो महात्मा। प्रभुपाद सेड दिस, आप शुद्ध भक्त है और आपका जो कुछ कोई पालन करता है, जो कुछ भी आपने कहा है, वो शुद्ध भक्त नहीं होने के बाद भी शुद्ध भक्त है। Why? Because you are on a right path. Therefore, so that's what, therefore, इसी रीजन है कि ब्रह्मवादियों की स्थिति वैष्णव से उत्तम है ऐसा मानना गलत होगा। They are more closer to Krishna than us? No.
I'm talking about materialists.
Oh yeah, materialist. Lekin vapis, again. Materialist, agar wo brahmavadi se niche, brahmavadi materialist se upar hai. Lekin wohi materialist lift mein ghus gaya bhakti mein.
I'm talking that materialist also takes to bhakti and this brahmavadi also takes to bhakti.
Yeah, but this materialist can, you know, progress faster then brahmavadis.
But isn't it easy?
It is all individual matter how you follow. Bhakti is you have to follow the steps of acharyas, that's it. You follow, you are, you know, swapacha vaishnava kya tha wo vaishnava swapacha guru, aur swapacha ka fir bhi guru banne ka yogya, aur brahmavadi shayad na bhi bane.
Brahmavadi becomes a devotee, that's what I'm saying. Brahmavadi, like, because there's Sukhdev Goswami and jo
ऐसा नहीं है, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ वैष्णवास। शुभदेव गोस्वामी को कृष्णा की महिमा व्यासदेव से सुनने को प्राप्त हुआ था, he heard the glories of Krishna from Vyas. Char Kumar jo hai, they उन्होंने भगवान के चरण कमल के तुलसी का सुगंध उनके नाक में गया था. So there is nothing independent. They must have either direct mercy of Krishna or either direct mercy of Vaishnava. And these direct mercies are available to the materialist also, not only Brahmavadis. Then why Brahmavadi will make faster progress?
He surrenders to a pure devotee,
Brahmavadi. That's what. And if the materialist surrenders to pure devotee, then he is better than Brahmavadi. Well, he is better than anybody else.
No, like both of them surrenders. Who will be make faster progress?
Because both will make the same progress if they follow Krishna and his devotees, 100%. You know, जिसने इतनी साधना करने के बाद ब्रह्मवादी बना, उसको 5 दिन में अगर कृष्ण के धाम में एंट्री मिलेगी और यहाँ पर भौतिक जगत में किसी ने गुरु के शरण लिया, उसको भी 5 दिन में शरण मिलेगी. Now what to say? It is now we should focus on devotee and his Krishna and his devotee's mercy. That is the main role, not what Brahmavadi is doing and what devotees are materialisting they are doing. So उनका कोई किसी भी लेवल पर है. अगर 3rd फ्लोर पे जाके लिफ्ट में घुस गया तो भी उस उतना ही टाइम लगेगा जितना 10th फ्लोर पे जाके नीचे से. इट्स सेम लाइक दैट. सो इट इज मैटर ऑफ हाउ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर. दैट्स इट. It is not that what sadhaka is at what level. Doesn't make any difference. Yoga ladder ki kisi bhi rang par se aap bhakti mein ja sakte ho, lekin niche ke rang se bhakti mein jane wale ko bhi wahi parinam milta hai. So that's why Prabhupada has removed this yoga ladder, for not for Kali Yuga. It's for you, it is bhakti yoga. I think it's clear. So, Prabhupada कहते हैं कि 15th श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ है, हम लोग एग्जिट सिस्टम को फॉलो करते हैं, महाजनों के संपन्न था, यही उत्तम तरीका है. प्रभुपाद ने कहा कि जन्म लेना किसी ने बंद कर दिया, पहले भी जन्म लेते अभी भी जन्म लेते, खाना किसी ने बंद कर दिया, उसको आप एंसेंट कैसे कह सकते हो? आई मीन हाउ यू कैन से दैट इज अ ओल्ड फैशन. यू नो, आपका ये संस्था जो है, बोले तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो प्रभु जी, आप टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन. प्रभुपाद से दैट ईटिंग इज इट मॉडर्न, कि आधुनिक काल में लोगों ने खाना शुरू किया, पहले कोई खाता नहीं था, पहले कोई सोता नहीं था. Prabhupada says, no, nothing is modernized. Principle is same. Nothing is changed. Janma mrityu jara vyadhi dukkha dosha. Vahi hai, abhi bhi hai. There is nothing modernized. So years and season also change. Everything continues. Then why should we not accept the system of Vedic knowledge, the oldest of all in world? Krishna advises, evam gnatva kritam karma purvari apir mamukshubhi. That karma should be divided according to quality of people. So therefore, accept, you know, the Mahajanas and follow the ancient path of Vedic knowledge. There is nothing modernized. Okay, 16.
Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which we shall be liberated from all misfortune.
Yeah, so even intelligent are bewildered in determining what is action. ये बुद्धिशाली व्यक्ति जो होता है, वो भी कर्म अकर्म में फंस जाता है. Actually ये वाक्य बहुत ही strong है. बुद्धिशाली व्यक्ति जो होता है, कृष्ण भक्ति के पास से गुजर सकता है. कृष्ण भक्ति के पास में आकर के कृष्ण भक्ति के बदले फंस जाता है दूसरे काम में. ऐसा हो सकता है. दैट इज वेरी मच पॉसिबल. ये वो कर्म क्या है और कर्म अकर्म क्या है ये बुद्धिशाली लोग भी समझ नहीं सकते। संसार में सब कुछ अपवित्र है ना, और इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत दुष्कर है। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई बुद्धिशाली व्यक्ति भी फेल हो जाए इसमें। सब कुछ इनऑस्पिशियस है, कहीं पर भी सुख नहीं है। एक बार प्रभुपाद गए थे जापान में, तो जापान में एक व्यक्ति, एक प्रभुपाद चाहते थे कि वो घर इस्कॉन को मिल जाए, तो व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा, नहीं वो बोले मैं इसे बहुत अटैच होने दूंगा। तो प्रभुपाद ने उसको कहा, प्रभुपाद ने शिष्य कहा कि तुम अगले जन्म में नो इसी घर में जन्म लोगे, क्यों? क्योंकि तुम बहुत जा सकते हो इस घर से। एंड दैट वॉज एक्चुअली रियलिटी। अगर आप किसी चीज में आसक्त हो, कई बार वो मेरे गुरु महाराज कई बार लेक्चर में कहते हैं कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो दूसरे जन्म में बहुत क्रिकेट करेगा, तो दूसरे जन्म में उसको वो क्रिकेट ग्राउंड का घास बनना पड़ेगा। घास बनेगा उसमें से। अभी रिसेंटली किसी क्रिकेटर ने ये अपनी लाइफ इच्छा वो भी कोई किया था, न्यूज़ में आया था कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो कहता है कि मेरी तो इच्छा है कि मैं वर्ल्ड कप की फाइनल की एक सिक्स जो है वो देखना चाहके तब अंतिम सांस लूँ। तो उसको भी गेंद की तरह उठा कर फेंकेगा कोई। सो आई मीन यस, जिस चीज़ में आपकी बहुत ही आसक्ति है वो आपको पता ही है। वो कौन था, उसका नाम क्या था?
हाँ
नहीं नहीं, वो जो फेमस हम ड्रामा भी करते हैं उसका, व्हाट्स हिज नेम, नारद ने उसको, नहीं नारद ने उनको उद्धार किया था, कुत्ता बना था फिर सांप बना था, व्हाट्स हिज नेम, आई फॉरगॉट द नेम। तो व्यक्ति का उदाहरण है ना जो जिसने वो,
हाँ
हाँ उसका नाम भूल गया। वो नारद कहते हैं भाई तुम चलो, ये लोग मेरी संपत्ति कैसे जा सकता हूँ, ठीक है क्या बना, बोले कुत्ता बनाऊंगा, घर के बाहर रहूंगा, ये लोग तो घर भी खुला छोड़ देते, उनको पता नहीं कि अंदर कितना माल पड़ा है, तो कुत्ता बन गया और भोंकता रहता है। कुत्ता घर के अंदर नहीं आएगा, बाहर रहो, बिवेयर ऑफ डॉग, बाहर रहो, बाहर। और नारद मुनि आए, बोले कहाँ गया वो, कहाँ गया, तो क्या करो इधर, तो बोले क्या करो, इन लोग को पता नहीं मैं कुत्ता बन गया, मैं इतना सब धन इकट्ठे करके रखा है। बाद में फिर वो सांप बन गया है ना, तो ऐसी पूरी कथा है। अंत में फिर भगवान नारद सोचते ही ऐसे नहीं मानेगा, तो बोल दिया तुम्हारे खेत में सांप है। तो सब लोग आए उसके बाप को ही मार देते, ख़त्म कर देते, ख़त्म कर देते। तो फिर भगवान नारद की कृपा से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा आ सकते हो तो चूहा बन जाएगा, घर में इधर उधर घूमता रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, पीपल विल नॉट एंटरटेन हिम। सो मटेरियल प्लेजर क्रिएट्स इल्यूजन। अभी आप पढ़िए 17, आवर टारगेट इज 32, लेट्स सी।
Intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is.
Yes. ये भूल जाए, किसी को बहुत कम लोगों को पता होता है कि एक्शन क्या होता है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो कर्म किसको कहते हैं, जो शास्त्र से आधारित कर्म है उसको कर्म कहते हैं। अकर्म किसे कहते हैं कि जिस कर्मों में बंधन नहीं लगता उसको अकर्म कहते हैं। और विकर्म किसे कहते हैं, जो शास्त्र से विपरीत कर्म है उसको विकर्म कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, शास्त्र से नूनम प्रमत्ते कृते विकर्मा, यद इंद्रिय प्रीत अपूर्ण होती। इंद्रियों के भोग के लिए जो व्यक्ति प्रमत्त होकर के पागल बन करके जो पाप करता है उसको विकर्म कहते हैं, इसका शास्त्र में कोई अनुमोदन नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को तोड़ना। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, दीज आर द पिलर ऑफ सिनफुल एक्टिविटीज। तो आप समझ सकते हैं ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? जनरली कर्म के रूप में कर्मकांड को समझा जाता है कि कर्म बताया गया शास्त्र में, भाई तुम्हें ये करना, नियत कर्तव्य शास्त्र के अनुसार, तो वो कर्म है। और अकर्म जो है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है या बंधन रहित कर्म है, वो है अकर्म। और विकर्म विपरीत है ना, पागलपन, उसको विकर्म कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस चीज को एक जगह पर कि पीपल डू नॉट नो व्हाट इज सिनफुल एक्टिविटी, दे थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट, नेचर विल टेक अकाउंट ऑफ एवरीथिंग एंड विल गिव यू अनदर बॉडी। प्रकृति के नियमों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यस, नेक्स्ट।
One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among man, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities.
This was 17, 18?
18.
Yes.
अगर इतना आसान है, मतलब जैसे हम जानते कि इसको कर्म है, इसको अकर्म और ये विकर्म है, तो फिर भगवान यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है कि ये समझना बहुत कठिन है?
इसलिए कहा गया है कि तुम जिसको अकर्म मानते हो वो शायद अकर्म ना भी हो, तुम जिसको विकर्म मानते हो शायद विकर्म ना भी हो, और तुम जिसको कर्म मानते हो उसको कर्म ना भी हो।
इट डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस,
इट डिपेंड्स ऑफ योर इंटरप्रिटेशन,
नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड।
फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जो करना वो कृष्ण भक्ति है, लेकिन वो अगर कृष्ण भक्ति नहीं है, वो विकर्म है, तो विकर्म ही रहेगा वो। आप उसका लेबल बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे इस कर्म का फल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो? सोवे 16 माला किया बस। अच्छा, और क्या करते हो? चार महीने को पालन करता हूँ। अच्छा, तो इससे आपको कोई कर्म नहीं लगेगा? हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। आप समझे ना, हाउ यू इंटरप्रेट इट। इसलिए इसको गुरु जी से समझना पड़ता है, महाजन ये ना कदर समझता, इसलिए गहना कर्म नोगति, कर्म नहीं समझ सकते कोई। जब तक अन्याभिलाषिता शून्यम ये नहीं हो जाता है, तब तक तुम कर्म करते ही रहोगे और उसका परिणाम भी आएगा। अन्याभिलाषिता शून्य, जब तक हमारा हृदय जो स्वच्छ नहीं हुआ है, इसलिए उसको हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा।
एक्शन करने, मतलब कर्म करने से मतलब अच्छा ही फल मिलेगा, वो गारंटीड है?
कैसे बता सकते हैं?
मतलब नहीं, विकर्म करने से तो पक्का है कि गलत ही मिलना है, लेकिन अब जो शास्त्र में लिखा है,
कर्म का बंधन तो लगेगा ही।
हाँ, लेकिन मतलब उल्टा तो मतलब नरक वगैरह तो नहीं मिलेगा?
गहना कर्म होती है, वी शुड नेवर ट्राई टू स्पेकुलेट दैट व्हाट रिजल्ट वी विल गेट बाय अवर कर्म। हमें कभी भी हमारे कर्मों के परिणाम का स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए कि इसका ये मिलेगा, इसका वो मिलेगा। बहुत गुह्य है, इट्स वेरी गुह्य। मीन्स अगर कोई कहेगा नहीं मैं कर्म को ही फॉलो करूँ, मैं विकर्म नहीं करूंगा, तो क्या होगा भाई? तुम्हें दुख तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि देयर इज नो प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। संसार में सुख है नहीं, तो कहाँ क्या करोगे? अच्छे काम करोगे तो यू नो अच्छी जेल मिलेगी।
जब तक अन्य अभिलाषिता शून्यम स्टेज पे नहीं आते, तब तक हम अकर्म कर ही नहीं सकते।
नहीं, ऐसा नहीं, प्रोसेस भक्ति में जुड़ जाते हैं आप, भक्ति की प्रोसेस में, तो आप अकर्म की ओर शुरुआत कर दिया आपने, और जिस चीज को आपने हाथ में लिया वो उस मार्ग के पथिक बन गए आप। उस जिस मार्ग के पथिक व्यक्ति को उसी कैटेगरी में देखा जाता है कि वो इसी कैटेगरी का आदमी है, बिकॉज़ ही हैज गॉन सिलेक्टेड दिस पाथ।
सपोजिंग
निष्काम कर्म योग, क्योंकि आप आपका कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर रहे हो ना, यू आर ऑफरिंग निष्काम कर्म योग। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको बंधन तो नहीं लगेगा, आपको ऑफर किया है बंधन तो नहीं लगा, लेकिन अन्याभिलाषिता शून्य में क्या होता है कि भगवान आज कौन सा खाना पसंद करेंगे, इसको अन्याभिलाषिता शून्य बोलते हैं। आपको क्या पसंद है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइक दैट, दैट इज अन्याभिलाषिता शून्य। तो इसलिए इन एक्शन या एक्शन कई बार लोग परेशान हो जाए, भगवान भी यू नो देखो ऐसा ये शब्द यूज करते हैं, बेहोश हो जाए लोग, कर्म में कर्म और अकर्म में कर्म देखता है ना। एक्चुअली कलयुग के लोग है ना, इसलिए भगवान ने मिसगाइड करने के लिए नहीं कहा है, यू नो इज इंटेलिजेंट अमंग मैन एंड वन हु सीज इन एक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इन एक्शन, कर्म में अकर्म और अकर्म में अकर्म। अभी आप जहां से सुन लो कि ये दो क्या चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। फिर कई बार भक्त लोग ऐसा कहते हैं प्रभु ये कर्म अकर्म और अकर्म कर्म, बेहोश हो गया, नहीं आसान है समझना, वेरी सिंपल। कर्म में अकर्म जहां पर भगवान यहां पर कह रहे हैं इस श्लोक में कि कर्म में जो अकर्म देखता है वो व्यक्ति भक्त है, जो अपनी आध्यात्मिक जो गतिविधियां है उसकी जो सेवाएं है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। आप समझे ना, इसमें डिस्टर्ब वो मत हो जाना। फिर से मैं बताता हूँ, कर्म में जो अकर्म देखता है वो कर्म करता है लेकिन उसको बंधन नहीं लगता है, क्योंकि उसके सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण किए गए, सिंपल लॉजिक। और अकर्म में कर्म कौन देखता है, ज्ञानी। अकर्म में कर्म वो ऐसा सोचता है कि अकर्म का जो मार्ग है एक्टिविटी को जीरो कर देना वो श्रेष्ठ है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति उसका पतन हो जाता है, जो अकर्म में कर्म को ढूंढने का प्रयास करता है। दैट इज द डेफिनेशन। हाँ अकर्म में कर्म बताता हूँ, जैसे कोई योगी है हिमालय गया, उसने अकर्म का मार्ग स्वीकार किया और हिमालय के बाद जाने के बाद फिर वहां पर कर्म नहीं कर कर्म को रोक नहीं पाया, अपनी जो जो अर्जीज होते बॉडी के उसको रोक नहीं पाया, तो इधर आ गया हरिद्वार में और फिर आश्रम बना दिया। और बुद्धि तो होती है इन लोग के पास, तो राजनीति राजनेताओं के साथ बैठना शुरू कर दिया, तो राजनीति में भी आ गया, तो इस तरह से फिर वापिस यू नो इस संसार में आ जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में कई ऐसे लोग हैं कि जो अकर्म करना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, भाई तो कुछ तो करेगा ना, कुछ नहीं करना भी तो कर्म ही है, बोलेगा सांस लेगा सुनेगा कुछ तो करेगा ना,
शरीर बिना कर्म किए रह नहीं सकता।
तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया आत्मा जो है वो कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकता, तो यह कर्म आया कहां से? क्योंकि वो लोग का दिमाग नहीं है कि भाई कर्म बंद नहीं हो सकते, वो लोग कर्म बंद करना चाहते हैं। भिक्षा मांगने तो जाएगा ना, तो कहां से लाएगा भिक्षा भोजन, वो भी तो कर्म है। बोले मैं तो अकर्म, मैं कुछ नहीं करता, माधुकरी करने जाता हूँ और अपना कोई धंधा वंदा नहीं करता, वो धंधा करना उसको कर्म नहीं बोलते, और माधुकरी करना उसको भी कर्म ही बोलते। सो दैट इज नॉट, ऐसा कभी भी ऐसा कोई समझ ऐसा नहीं होता कि प्रभुपाद सेज कि दैट्स नॉट पॉसिबल एवर फॉर एनीबडी टू स्टॉप एक्टिविटी पर से, है ना, टोटली पॉसिबल ही नहीं है। So, artificial attempt to stop activity is causing utpada eva kalpate. समाज में उत्पात करेगा, भाई इससे अच्छा है कुछ कर्म किया कर, डू समथिंग, कर्म नहीं करने से अच्छा, वो तो भंगी अच्छा प्रभुपाद कहते थे, वो जो ढोंगी मायावादी है इससे तो ये भंगी अच्छा है, कर्म तो करता है, ये तो नहीं कहता कि मैं तो कर्म नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी बोलता। सो दैट्स वे कि
भगवान
ऐसा कहते हैं यहाँ पर कि इंटेलिजेंट अमंग मैन, सो एवरी सोल इज यू नो अनअवॉइडेबली एक्टिव। वो ज्ञान योगी के विषय में कहा जाता है, तो वो एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे वाला है, वो एक स्टेप ऊपर वाला है।
जो फर्स्ट वन है वो तो भक्त के संदर्भ में yes. कर्म में अकर्म, पर ये जो सेकंड वन है उसमें वो भक्त किस नजरिए से देखता है? वो भक्त देखता ही नहीं है, ये जो सेकंड है वो भक्त को अप्लाई नहीं होता, जो अकर्म में कर्म देखता है, इज दैट अप्लाइड टू डिवोटी और
नो? इट इज नॉट अप्लाइड टू डिवोटी, इट इज अप्लाइड टू ज्ञान योगीज। सो जनरली वो लोग क्या होते हैं, विदाउट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा, जो कृष्णा का ज्ञान नहीं रखते, दैट्स ज्ञान योगी, एंड मे अपीयर नॉट टू बी परफॉर्मर बट एज अ सोल कैन नॉट अवॉइड इधर एक्टिविटी और एंटेंगलिंग रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। कृष्ण का ज्ञान नहीं होने के कारण वो कृष्ण की सेवा के लिए कार्य नहीं करते, इसलिए उनको बंधन लगता है। इंटेलिजेंट इज बिकॉज दे आर बेटर देन कर्म योगीज।
यहाँ पे जो दोनों को देखता है या फिर यहाँ पे वन हु सीज इन दिस वे एंड बोथ वेज,
वन हु सीज इन एक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन इज इंटेलिजेंट अमंग मैन। एक रूप से देखा जाए इसका दूसरा अर्थ अगर आप लोगे, हमने तो प्रभुपाद का अर्थ लिया अभी यहाँ पर सिंपल, दूसरा अर्थ ऐसा होता है अकर्म कर्म कर्म न कर्म मीन्स या निशास्त्र भूतानाम वाला। अगर वो आपको मानना, अगर जो व्यक्ति के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो संसार के लोगों की प्रवृत्ति है उसमें हमारी निवृत्ति है, और जिस चीज में हमारी प्रवृत्ति है वो संसार के लोगों की निवृत्ति है, इसलिए एक रूप से देखा जाए तो दोनों ही सही है, लेकिन हमें इसको समझना है ज्ञान योग की दृष्टि से। ये पर्टिकुलर चौथा अध्याय में ज्ञान योग, इसलिए कई बार भक्त लोग एक चैप्टर दूसरे चैप्टर को मिक्स कर देते, बट दिस इज टू बी अंडरस्टूड दैट इनएक्शन इनएक्शन इज मेंट फॉर द डिवोटीज, आई मीन हु आर ऑफरिंग द फ्रूट्स टू कृष्णा फॉर डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, एंड एक्शन इन इनएक्शन आर फॉर ज्ञानीज, ज्ञान योग इज नॉट फॉर भक्ता। सो दे आर इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर हैविंग नॉलेज बट दे आर डिवॉइड ऑफ नॉलेज ऑफ कृष्ण, ज्ञान है लेकिन कृष्ण का ज्ञान नहीं है, दैट इज द मैटर।
मुझे कैन इट बी इंटरप्रेटेड लाइक कि वो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, तो अगर वो जो है वो अगर खुद को आत्मा मान लिया कि वो आत्मा है, तो उसके लिए तो कर्म जो हुआ आत्मा का ही कर्म मानेगा वो, कि आत्मा का तो कर्म ही होता है कि भगवान की सेवा करना, तो अगर वो मानता ही नहीं कि वो बॉडी है तो उसके लिए तो कर्म और अकर्म दोनों एक ही हो गया ना।
कैसे?
क्योंकि अब वो तो मानता ही नहीं कि वो बॉडी है, वो मानता है कि वो सोल ही है, तो अब सोल के
सोल तो कभी स्वतंत्र तो नहीं है,
नहीं स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उसका कर्म तो भगवान की सेवा ही करना
है, वो तो उसका स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है। समझ लो कोई व्यक्ति रोगी है तो उसका रोग पूर्ण रूप से मुक्त होगा तब उसको पता पड़ेगा कि मेरा काम भगवान की सेवा करना है। Yes.
ऐसे भी हो सकता है भक्त की जैसे कि फर्स्ट वाला बताया कि हाँ कि इनएक्शन दिस इज इनएक्शन इनएक्शन, यानी कि जो भी वो भक्ति कर रहा है ठीक है, तो वो एक्चुअल में इनएक्शन है क्योंकि उसके कर्म फल नहीं लगता, दैट्स व्हाट इज इनएक्शन, उसको एक्शन देखता है, और जो कर्म है जिसमें एक्चुअल में लगते हैं वो, इसलिए वो करना नहीं चाहता वो,
दूसरा जो है वो ज्ञान योगी के लिए प्रभुपाद बता रहे, वो ज्ञान योगी के लिए है, हम वो कर्म नहीं करते जिसमें बंधन लगता है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो हमारे कर्म के एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अलग है। इसलिए पहला वाला भक्त के लिए, दूसरा वाला ज्ञान के लिए। ओके नेक्स्ट।
वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज हुज एवरी एंडेवर इज डिवाइड ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सेड बाय सेजेस टू बी अ वर्कर फॉर हुम द रिएक्शंस ऑफ वर्क हैव बीन बर्नड अप बाय द फायर ऑफ परफेक्ट नॉलेज।
Prabhupada comments, only a person in full knowledge can understand the activities of a person in Krishna consciousness. Because the person in Krishna consciousness is devoid of all kinds of sense gratificatory propensities. It is to be understood that he has burned up the reactions of his work by perfect knowledge of his constitutional position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. He has actually learned who has attained to such perfection of knowledge. वो इसमें स्थिर हो जाता है अपनी स्वरूपावस्था में। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं कि अभी तक के जितने भी डिस्कशन हुए उसमें कुछ समझ नहीं पाए? Anybody is there? कि जितने भी डिस्कशन अभी तक मुश्किल से 5 श्लोक या 6 श्लोक लिए तो उसमें आप अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? डू यू थिंक एनी वेयर स्टिल? देन वी फर्दर गो ऑन 19th एंड देन 20th एंड ऑल। क्लियर? इज दैट समथिंग हैवी टू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है, जस्ट लिटल क्लैरिफिकेशन, राइट? सो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति ने अपने कर्म के सारे फल जो रिजल्ट है वो जला दिए है, कैसे? भक्ति के मार्ग से। इसलिए हम जो कर्म करते हैं, अगर आप लोग अगर पैसा कमाते हो और भगवान को अर्पण करते हो तो आपको उसका फल नहीं लगता है?
पैसे कमाने का?
हाँ, नहीं लगता है, कर्म का वो बंधन नहीं लगता है।
100% नहीं देता।
हाँ, अगर आपका उद्देश्य भगवान की सेवा है, लाइफ लॉन्ग गोल कृष्ण की सेवा है, you know, तो आपके 100% मनी कृष्ण की सेवा में है, भले आप अपना निर्वाह करते हो या वॉट एवर, बिकॉज इफ यू आर मेड द लाइफ। जैसे कई बार मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप यहाँ से टेंपल जा रहे हो और टेंपल में जाते समय बीच में टायर पंक्चर हो गया और पंक्चर करने के लिए, अभी पंक्चर के लिए आपको कुछ गैरेज वगैरह कुछ ढूंढना पड़ेगा, मैकेनिक वगैरह को, राइट, ये आपको ठीक कर, और आप वहाँ से अपनी गाड़ी चला करके लेके जा रहे हो मैकेनिक के पास, और बीच में आपको किसी ने बोला क्या करते हो यार, जीवन का लक्ष्य गैरेज के पास, गैरेज में जाना है? इस इज योर गोल ऑफ लाइफ टू गो टू मैकेनिक? तो भाई वो जीवन का लक्ष्य तो उसका मैकेनिक के पास जाना नहीं था,
मंदिर जाना,
वो तो मंदिर जाना ही है, लेकिन मंदिर जाने के लिए उसको गाड़ी ठीक करना पड़ा, इसलिए उसको जाना पड़ा उधर। सो इफ यू आर अर्निंग लाइवलीहुड, अगर आपका जीवन कि आप यू नो ठीक करने उसको मेंटेन करने के लिए कुछ कर रहे हो भौतिक दिखने में भौतिक कार्य, सो योर गोल इज व्हाट? टू प्लीज कृष्णा। हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म है कि इसमें हमारा प्लेजर और भगवान के प्लेजर में थोड़ा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मैं पैसा कमाता हूँ लेकिन फिर कुछ मेरे लिए उपयोग करता हूँ, कुछ भगवान के लिए उपयोग करता हूँ, लेकिन मैं तो प्रभु जी भगवान का भक्त हूँ ना मुझे तो ये सब मिलना ही चाहिए ना। आई एम एटलीस्ट यू नो आई एम बेस्ट अमंग मैन यू नो बिकॉज आई एम डूइंग सर्विस टू कृष्णा, ये समस्या है, दैट्स इट। सो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कर्म करने से बड़े बड़े कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कर्म करना चाहिए और ये केवल गुरु महाराज की कृपा से, गुरु चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की कृपा से ही पॉसिबल है। इसलिए कई बार होता है ना कि हम क्या कर्म करें, हम बंधन से मुक्त करो, वेरी सिंपल, जस्ट गो टू द स्पिरिचुअल मास्टर, आस्क हिम what shall I do? And Guru Maharaj will say, okay, do this. And when you are doing this, no reaction. But when you are doing, no. ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं इसका तात्पर्य ये है, गुरु महाराज कहते हैं इसका तात्पर्य वो, हाँ तब गया भैया तू, और इसका अगर तुम सही से समझ नहीं पाए और अपने अपना इंटरप्रिटेशन डाल दिया इसके अंदर और गुरु महाराज को रिकन्फर्म भी नहीं किया कि गुरु महाराज मैं ऐसा इंटरप्रिटेशन के सच है, देन यू आर गॉन। अपने जीवन के लक्ष्य को या जीवन शैली को बदलने से पहले आप अपने आध्यात्मिक गुरु से कन्फर्मेशन लो कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, क्या ये उचित है, क्या ये कार्य से मुझे भगवान की सेवा में प्राप्त आगे बढ़ पाऊंगा, क्या ये कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, देन यू आर सक्सेसफुल। यस, नेक्स्ट।
अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज, आई वाज सैटिस्फाइड एंड इंडिपेंडेंट। He performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings.
तो ये किसके लक्षण बताए गए हैं? जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति ज्ञान युक्त होकर कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। सॉरी, ज्ञान प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोगों के लक्षण है ये। दिस आर द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपल हु आर ऑन अ ज्ञान प्लेटफॉर्म। अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट इज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज, एवर सेटिस्फाइड इंडिपेंडेंट, ही परफॉर्म्स नो फ्रूटिव एक्शन, ऑल्दो एंगेज इन ऑल काइंड ऑफ अंडरटेकिंग्स। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इसका अर्थ यहाँ पर तात्पर्य इसका ये दिखा रहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान योग ये साधक का ये श्लोक, एक्चुअली साधक के विषय में है ये श्लोक, जो साधक का है 20वें श्लोक में, वो अभी भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि जो अनासक्त होकर के जो कर्म करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। इस श्लोक में कहा गया है अनासक्त होकर कर्म करना, वही तो आगे वाले श्लोक में बताया था अकर्म कर्म देखना। तो अनासक्त होकर के कर्म करने वाला सिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन ज्ञानी को समस्याएं का सामना करना पड़ता है। मतलब हमने पहले चर्चा कर ली कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति था जिसने कहा मैं 16 माला के बदले 64 माला जप करूंगा, प्रभुपाद के सामने ही, अफ्रीकन डिवोटी था मायापुर में, तो प्रभुपाद उसने कहा, एक भक्त ने कहा प्रभुपाद ये ऐसा किसी को सुनता नहीं और अकेला बैठकर भजन करने का प्रयास कर रहा है, भक्तों के साथ नहीं रहते। तो प्रभुपाद ने कुछ प्रभुपाद ने कहा 2-4 दिन में चला जाएगा। हाउ? क्योंकि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा रह नहीं सकता उस लेवल पर, जिसने अभी आत्मा को उसके ज्ञान से शुद्ध नहीं किया है, वो व्यक्ति कर्म के भी बिना कर्म को रह नहीं सकता, ठीक है ना। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो निर्जन भजन वाला, वो चला जाता है वहाँ पर, एक योगी था बाबा जी जो वृंदावन जा गया और झाड़ू वाली को उठा के ले गया और नवदीप में जाके आश्रम बनाया, शादी कर ली थी उसने। सो दिस इज ऑन द ग्लैंड, बट नाउ द सिद्धास, जो सिद्ध सिद्धि को प्राप्त करते हैं उसके विषय में पढ़ो 21 और 22।
Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions.
Yes, you can read the purport.
A Krishna conscious person does
not start from this. He moves exactly like a part of machine.
Sorry.
He moves anichevada.
He moves exactly like a part of machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not, therefore, become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his actions.
Yes. So, यहाँ पर जो भक्त होता है वो अपने आप को मशीन का एक अंश मानता है. जैसे मान लो कि पपेट होता है ना, प्रभुपाद कहते हैं कि नाचाओ नाचाओ मोरे नाचाओ उत्पट काष्ठेर पुतली जथा नाचाओ उत्पट. ऐसे कोई कठपुतली को नचाता है उस तरह से हे प्रभु मुझे आप नचाइए. सो दैट इज द वे ऑफ सरेंडर. जो भगवान हमसे करवाना चाहते हैं, भक्त पूर्ण रूप से इतना सरेंडर हो जाता है भक्त कि वो सब कुछ, उसका खाना पीना सोना चलना बैठना उठना बात करना सब कुछ भगवान की इच्छा से कंट्रोल होता है. Everything is doing. That is, we are praying to Krishna. This is what we are praying to Krishna. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, हमें आपकी सर्विस में लगाओ, हमें आपके मशीन का एक भाग बनो, नियत चरण स्थान मांगे ये पामर कांदिया कांदिया करो हे करुणा. नियत चरण स्थान, आपके चरणों में जो मेरा नियत स्थान पहले भी था, अभी भूल गया मैं. I am supposed to sit at your lotus feet. You know. So this is what I was supposed to get. Lekin main bhul gaya, mujhe wo cheez mujhe wapas chahiye. To jaise animal ka udaharan Prabhupada de rahe hain na, kya de rahe hain animal ka udaharan?
Uska kuch apna proprietorship nahi
hai. Ah, tumhara hai Vaishnav Thakur, tumhara kukur janiya. Kehte hai ki he प्रभु मुझे आपका कुत्ता मान के. सो दिस इज द वे ऑफ अप्रोच. हमें पशु का कोई, उसका कोई अपना स्वतंत्रता नहीं है. और वो भक्त जो होता है वो पूर्ण रूप से शरणागत होकर और पूर्ण रूप से एंगेज रहता है. उसकी भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ही इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी प्रसन्नता का सोचता भी नहीं है. तो एक बड़ा प्रसिद्ध सॉन्ग है, कौन सा है? तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार. उसमें बहुत सुंदर कहते हैं आचार्य भक्तिवंत ठाकुर के, तुम्हारी इच्छा से सृजे कारागार माया सृजे कारागार, ब्रह्मा करे न सृजन विष्णु करे न पालन शिव करे न संहार. ऐसे पूरा सॉन्ग में भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं. और बाद में कहते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारी इच्छाएं आसी निर्भर रहिया. फिर कहते हैं कि भक्तिवंत कहते हैं कि अब तो केवल तव सुख सार. हे प्रभु, मेरी लाइफ में अब मेरा अपना कोई सेपरेट या इंडिविजुअल पर्सनल कोई इच्छा शेष नहीं है. अभी आपको भी प्रसन्न करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है. और यही स्पिरिट से मैं जो कार्य करता हूँ, इसलिए अब मेरे पास अपनी इच्छा सारी नष्ट हो चुकी है. क्यों नष्ट हो चुकी? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि आपकी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती। सो व्हेन यू आर बिजी इन एक्टिंग, बिकॉज अभी तक तो आपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए, अभी तक आपको गुरु को आप प्रसन्न नहीं कर पाए हो, प्रभुपाद जी को प्रसन्न नहीं कर पाए हो, तो आपको अभी बहुत कार्य करना शेष है। यू हैव नो टाइम फॉर सेंस एंजॉयमेंट, आपको इंद्रिय भोग करने के लिए टाइम ही नहीं है। टाइम मिलेगा तो सोचेंगे ना, अभी आपके पास टाइम ही नहीं है, यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट, बिजी। तो उसकी जो लोभ होता है, उसका लोभ सेवा करने का, भगवान को प्रसन्न करने का, वो लोभ उसका बल, जीवन का बल बन जाता है। दैट इज द इज वाइटल फोर्स ऑफ सर्विंग। और ये कैसे आता है? बाय एसोसिएटिंग वैष्णवस। संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। भक्त के पास जाते हो ना, तो भक्त आपको कहते हैं कि कृष्णा की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, यही तुम्हारे जीवन का उत्तम लक्ष्य है। तो वो आपको स्मरण आता है फिर से, हाँ आपकी बात सही है, यही सही है, यही मुझे करना चाहिए। मैं बार बार इसको भूल जाता हूँ, अगर मुझे याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार ऐसे भक्तों के पास जाना पड़ेगा जो मुझे स्मरण कराए कि मेरा जीवन जो है वो गुरु के लिए है, भगवान के लिए है, प्रभुपाद के लिए है। ये बार बार स्मरण कराए, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यू नो एवरी डिवोटी शुड हैव समवन विद यू नो हिम और हर दैट, कि उनकी बात को उनको यू नो ही वेरी सिंसियरली लिसन्स टू दैट पर्सन एंड ही टेक्स यू नो ही इज अंडर केयर ऑफ दैट डिवोटी, यू नो। तो देन ओनली ही कैन प्रोग्रेस। हाउ कम इट इज, हाउ कैसे होता है, क्योंकि वो मॉनिटर करते रहते हैं भक्त, कि इस भक्त को अभी इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज को इसकी आवश्यकता है। एंड दे आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ आई मीन गुरु, दैट्स व्हाट अपने डिसाइपल कोर्स में हमने पढ़ा था, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का। सो जब भाव भक्ति का स्तर आ जाता है तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। भाव भक्ति में क्या होता है कि आपके सारे कर्म ऑटोमेटिकली, यशोदा माता को 16 माला जप करने के लिए माला लेकर ऐसे जप माला लेकर बोले क्या करो, बोले अभी कुछ डिस्टर्ब मत करो, चैंटिंग कर दो, ऐसा यशोदा माता को नहीं करना पड़ता है। कि नंद महाराज को बोल दे भाई तुम अपना काम कर लो सुबह का 2 घंटा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी कृष्णा उठ जाएगा तो मुझे 16 माला नहीं करने देगा। यशोदा माता के लिए नहीं, भाव भक्ति के स्तर पर। और हम जिस भक्ति के स्तर पर होते हैं वो उसके लिए हमें भगवान की इच्छाओं को बार बार देखना पड़ता है, क्या इच्छा है भगवान की, क्या इच्छा है गुरु की, यू नो दैट इज भाव भक्ति। हम है एकदम छोटे से इनसिग्निफिकेंट एनिमल फॉर कृष्ण, इनसिग्निफिकेंट। पतित किंकर धरी पाद पद्म धूलि करी देहो भक्ति विनोद आश्रय, यू नो दैट श्लोक, ये सॉन्ग जानते हो आप। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं कि ए है न समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु, मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से, ना नाक दबा दिया है सब लोगों ने मेरा, फंस गया हूँ पूरी तरह से, कर्म ज्ञान काम क्रोध आदि छय बाटो पाड़ी देव भय सब लोगों ने मुझे जकड़ लिया है ना, मेरी इच्छा है बहुत ही, इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी है कि मैं अपने आप को वश नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, चाहता नहीं हूँ फिर भी करता हूँ। तो ऐसी दुखी अवस्था में ए हे न समय बंधु, हे कृष्ण तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, ए हे न समय बंधु कृष्ण तुम ही कृष्ण कृपा सिंधु, तुम कृपा के सागर हो, तोलो मोरे बले, है ना, कृपा करी तोलो मोरे बले, और मुझे इसमें से बलपूर्वक खींच करके निकाल लो, किसमें से, ये कचरे में से, ये मैं एक गंदगी में पड़ा हूं, इसमें बलपूर्वक मुझे निकाल लो। आगे क्या है, तोरे मारो बले, फिर आमी तव नित्य दास, मैं आपका नित्य दास हूं कृष्ण, मैं यू नो मिस्टर पटेल, मिस्टर दिस, मिस्टर दैट नहीं हूँ। आमी तब नित्य दास, भूलिया माया रे पास, और ये माया के कारण मैं भूल गया। क्या भूल गया? मैं आपका दास हूँ, नित्य दास। देहो भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद को हे प्रभु आप आश्रय दीजिए। और उसके आगे वाले श्लोक में था, पति तो किंकर धरी, कृष्ण आप मेरे मित्र हो, आप बहुत दयालु हो, तो आप मुझे सबसे पतित देखो, मैं पतित हूँ। पति तो किंकर धरी, मैं तुच्छ हूँ, इनसिग्निफिकेंट हूँ, ऐसा देखो मुझे, प्लीज सी, लुक एट मी। पति तो किंकर धरी पाद पद्म धूलि करी, आपके चरण कमल में कोई बड़ा वरदान नहीं चाहिए मुझे, क्या मुझे वृंदावन में घर बना के दो, या मुझे कोई महान शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद, ऐसा नहीं चाहिए। पाद पद्म धूलि करी, आपके चरण कमल में थोड़ा सा धूल के रूप में रख लो बस, पाद पद्म धूलि करी। हामी तो वह नित्य दास बोलिया मायरे पास, उसके बाद पति तो किंकर धरी पाद पद्म धूलि करी, बद्ध बद्ध होए आजसी दयामय। हे कृष्णा, मैं बद्ध तुम्हारी चरण में आश्रय ले रहा हूँ, आप दयामय हो, आप दयालु हो, हे कृपा करके इस भक्तिनाथ ठाकुर को आश्रय दीजिए। ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर का, दिस इज द मूव, यू नो, ये पाद हम है इनसिग्निफिकेंट। एक बार एक भक्त प्रभुपाद के पास आया था, प्रभुपाद ने लेटर, प्रभुपाद को लेटर में लिखा, प्रभुपाद लेटर में क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद के पास आकर, आई मीन आई एम प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल यू नो फ्रस्ट्रेट धनवस, आई एम द मोस्ट फॉलन यू नो सोल, मोस्ट फॉलन सर्वेंट, ऐसा करके प्रभुपाद लिखा, आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ। तो प्रभुपाद ने कहा, वेन यू आर द मोस्ट फॉलन देन हाउ कैन योर प्रॉब्लम विल कैन बी ग्रेट, यू नो, जब आप बहुत ही पतित हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम महान कैसे हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट अ महान व्यक्ति कि तुम्हारा प्रॉब्लम महान हो, देर इज नो ग्रेट प्रॉब्लम, यू नो, बिकॉज यू आर इनसिग्निफिकेंट, योर प्रॉब्लम इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। So the problem is there. There is a great problem, that is pride. Tumhara great problem kya hai? Ki tumhara ahankar tumhare aa jata. Tumhara ahankar jo hai wo tumhara satru hai. That is your great problem. Aur iska opposite hai. Pad padma dhuli kare ka ye opposite hai. Jab bhi humne song ka jo aapko bataya, uska ye opposite hai. Ahankar. Main ye kaise kar sakta hu? Hey Guru Maharaj, main बड़ा ही पतित हूँ, बड़ा ही पतित। आई टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर, जयप्रताप महाराज के पास को गया था, जयप्रताप महाराज को बोले, महाराज मैं बहुत पापी हूँ, महाराज बोले हाँ पता है, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अपराध किया, महाराज बोले हाँ पता है, तो दो तीन बार हाँ ठीक है ऐसा कहा, फिर भी बोले लगा, बोले ही जा रहा है, यू नो, आई थिंक इट वॉज इन टेरेस पर अपने कमरे में, तो क्या कहा महाराज बोले अंत में, लास्ट में तीन चार बार बोले, आने का मुझे पता है कितनी बार बोलोगे, आई नो यू आर फॉलन, यू आर सिनफुल, दैट्स व्हाई यू हैव कम टू मी, मुझे पता है इसे, तो मैं तो अब हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट, देन यू टॉक, पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ, गाना गाया जा रहा है कब से, पापी हूँ, क्या होगा इससे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट यू ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट, इससे मुक्त होने का प्रयास करो। So, we cannot be, you know, great, because we are insignificant. इसलिए ये भी मत सोचो कि मैं महान सेवक बनूंगा, ये भी मत सोचो, सेवक का अर्थ महान नहीं होता है, सेवक का अर्थ होता है तुच्छ होता है, सेवक इस दास है, बोले मैं महान दास हूँ, महान दास का क्या अर्थ है, doesn't make any sense. Be insignificant. Das means insignificant. So we stop here. There is another slok, very sweet, but I think that we can talk on later. I mean, I was supposed to 32 tak karna tha. Koi baat nahi. Lekin maine Bhakti Ashray Vaishnav Maharaj ko last 10 slok ka bol diya already. So 32 se 42 ka wo lene ka plan bana rahe hai. लेकिन लेट्स सी महाराज अगर 20 लोग ले सकते हैं तो आई आस्क महाराज टू टेक 20 श्लोकास. दिस मंडे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बहुत प्रसिद्ध, इस्कॉन में बहुत उनकी कथा है, उनका प्रवचन बहुत प्रसिद्ध है और पूरे भारत में यात्रा करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं. कुछ 3-4 साल पहले शायद उन्होंने संन्यास लिया है तो यहाँ पर भी आए हुए हैं और भक्त लोग को बड़ा अच्छा लगता है उनसे कथा सुनना वगैरह. और भगवद गीता पर उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका होल है तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया. तो मैं एक निवेदन करूँगा कि आप कुछ भक्त मे बी यू कैन डू दिस सेवा, मे बी 2-3 भक्त करें ये मैसेज कि जो भक्त रेगुलर यहाँ पर नहीं आना चाहते तो मे बी दे कैन डिसकंटिन्यू. देर इज नो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है ना, कोर्स करने के लिए फोर्स थोड़ी ना है, तो उनको वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. इसके लिए अगर आप कितने भी अच्छे एक्सक्यूज लेके आएंगे तो फिर हम उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एक लेवल के बाद एक्सेप्ट नहीं होता है ना. तो जो लोग रेगुलर नहीं आ पाते हैं तो उनको आप डिसकंटिन्यू करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सो ऑफकोर्स दैट पार्ट गिरिराज सखप्रो विल डू, बट आप ये रिमाइंडर भेजना है आप 2-3 भक्तों क्या कि जब सन्यासी आते हैं सिखाने के लिए तो उनके पास सीखने के लिए आप समय निकाल के आइए. जब सन्यासी आपको सिखाने के लिए इधर आएंगे वेलकम टू अवर प्लेस, तो उनके पास सीखने के लिए यू शुड गेट आउट सम टाइम, थोड़ा समय निकालो. और आपके जितने भी रजिस्टर का जो लिस्ट है ना उसमें से जो नहीं आते हैं ना तो उनको आप कौन कह सकते हो कि प्रभु जी महाराज आ रहे हैं और महाराज ने कहा कि सबको बोलना है, एक भी अटेंडेंस ड्रॉप नहीं चलेगी इसमें.
एक बार भी जो नहीं है
ऐसा भी कोई है तो उनको तो हम कर ही सकते हैं कि भाई आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करो और जो पिछले 2 महीने से नहीं आ रहे हैं तो उनको भी आप बोल सकते हो. लेट दिस पार्ट टेकन केयर बाय गिरिराज सखा प्रभु. सुविष्टा पे आई एम सॉरी, लेकिन मेरा उद्देश्य